कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है साप्ताहिक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो अभी नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस हम लोगों ने मनाया। आप लोगों ने ऊपर देखा डेकोरेशन कितना सुंदर है, और पूरा टेंपल हॉल का भी डेकोरेशन, सजावट। टेंपल मतलब मंदिर हॉल, पूरी बात अभी भी वही है। आज देखा कि नहीं देखा, ऊपर थोड़ा झांका कि नहीं झांका है, तो वही श्रृंगार आज तक भी है पूरा। आगे जो सफेद भगवान की दर भी लगा है ना, तो ये भक्तों ने किया है। आप लोग आगे आ जाओ, जो पीछे आएगा बाद में पीछे आ जाएगा थोड़ा। तो आप इधर को आई और इधर को थोड़ा सा पीछे होना, बस ऐसे आ जाओ। गोसाई बसो, वो खुला हुआ एक मर्दन अंदर से भी ले आओ। तो अभी जो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आने वाला है। कल से फरवरी शुरू हो जाती है, और फरवरी जो है फरफर करके निकल जाती है, क्योंकि केवल 28 दिन की होती है। फरवरी में सबसे छोटे दिन होते हैं, बहुत जल्दी, और हवाएं भी ठंडी अच्छी हवा निकलती है। और 28 तारीख को राम महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, जन्म दिवस है। तो इसमें गौर महिमा वर्णित है इस भजन में, इसको गाएंगे हम लोग। के जाबे के जाबे भाई भव सिंधु पता, कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो भव सागर पार जाना चाहता है। यहाँ कितने हैं, नहीं हाथ जो खड़ा नहीं करेगा, मतलब इस जन्म में इच्छा नहीं है, पर भक्ति करेंगे, खाएंगे पिएंगे, यही रहेंगे बस। के जाबे के जाबे भाई, चैतन्य अवतार धन्य कली युगे, चैतन्य अवतार
Shalom, Thank you.
गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की भजन का अर्थ सुनिए ध्यान से। के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगे रहो श्री चैतन्य अवतार। अरे भाई, भव सागर से पार कौन जाएगा, कौन जाएगा? यह कलियुग धन्य है क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर हरिनाम रूपी नाव लेकर अवतरित हुए हैं। अतः जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ, जहां पर नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है। स्वयं गुरु जी इसके नाविक हैं, जो हरिनाम संकीर्तन रूपी चप्पू नाव चलाने वाला डंडा हाथ में लिए हैं। इस घाट पर जड़, अंधा तथा कातर जो कोई भी क्यों ना हो उसे निःशुल्क ही पार कराया जाता है। पदकर्ता श्री लोचनदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब जीव तो प्रेम की हवा के स्पर्श से ही पार हो गए, परंतु मैं अपने कर्मों के कारण यहीं पड़ा रह गया। बोलते हैं कितना सुंदर भाव है इस भजन का कि के जाबे भाई भव सिंधु पार। सबसे पहले तो मन में यह भाव रखना होगा कि हमें इस भव सागर से पार जाना है, और दुर्लभ बताया है सुदुर्लभम प्रसन्न आत्मा। इस संसार में कितने लोग आत्मा को जानते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परम ब्रह्म का अंश हूं, इतना जान करके वो संसार में ही मशगूल हो जाते हैं, खो जाते हैं, मतलब बस इससे आगे का जानना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग जो हैं भक्ति में आकर के अपनी इच्छाएं करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, और वो चीजें उनकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद भगवान को भूल जाते हैं। सकाम भक्त जिनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, मैं भगवान को मानता भी हूं, उनको जानता भी हूं, उनकी भक्ति भी करूंगा मैं, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब संसारिक वस्तुएं मिल जाने के बाद वो भगवान को भूल जाता है, भगवान लक्ष्य नहीं बन पाते उसके। तो शुद्ध भक्ति या निष्काम सेवा जो है वो हृदय में आने के लिए ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो हृदय से शुद्ध हो, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, जिनको संसार को भोगने की इच्छा और मुक्ति पाने की इच्छा भी है, भले ही वो प्रवचन बहुत अच्छा करते हो, अगर ऐसे लोगों के संग में भी अगर आप रहेंगे तो क्या होगा, आपकी भी वही लालसा जागेगी जो उनके हृदय में है। तो इसलिए सबसे जरूरी है ऐसे भक्तों का संग करें जिनका जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, ऐसे भक्तों का। तो आप पूछेंगे ऐसे भक्तों को कैसे हम पहचाने, बोले भाई जितने भी इस्कॉन में भक्त हैं वैसे ही हैं, भले ही इस्कॉन के भक्तों की भोग हो, दूसरी चीज की इच्छा हो शुरू शुरू में, लेकिन वो भक्तों का, क्योंकि तांदेर चरण से भी यहां पर हल है, क्योंकि यहां पर भक्तों का संग है, वो भक्तों का संग करते करते, प्रभुपाद जी के शिष्यों का संग करते करते, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते पढ़ते, नाम जपते जपते, क्योंकि ये सारी चीज तो शुद्ध है, ये सभी निष्काम सेवा वाली चीजें हैं, है नहीं, तो इससे जुड़ने से उसको अपने आप जो है ये ज्ञान हो जाएगा। केवल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से हमें पता चल जाता है कौन भक्त कैसा है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हम फिर भी अपराध नहीं करते हैं, ये बोध होना चाहिए हम की, क्योंकि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, कोई इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म बाद जाएगा, 10 जन्म में नहीं तो 100 जन्म बाद जाएगा, लेकिन जाना है ही है। अगर जिसको शांति चाहिए, जिसको वास्तव में 24 घंटे खिला खिला मुख चाहिए, प्रसन्नता भरा वाला, और कोई टेंशन नहीं चाहिए, एक भी टेंशन, ये सवेरे सवेरे उठ करके कमाने जाना हो रहा हूं, ठीक है कि नहीं, या रात भर सोने का समय है तो नाइट सर्विस में बुला लेते हैं, किसी की इच्छा है रात को जागने की बताओ, लेकिन क्या करें, पैसों के लिए करना पड़ता है संसार में लोगों को। तो इसीलिए कहते हैं जब तक शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय में हमारे लालच नहीं जागेगा धाम जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो हमारा पहला काम है कि जन्म अनेक भय जगमाही, कब होना भक्ति खरी थारी, अनेक जन्मों से हमने इस संसार में कष्ट ही पाए हैं, रिश्ते नातों के साथ में जुड़ करके हमने क्या पाए हैं प्रभु जी, कष्ट ही पाए हैं। तो फिर से हम नया रिश्ता ढूंढने की चिंता ना करें, जो कर्म के हिसाब से स्वाभाविक रूप से मिल गया है, जैसे माता पिता, ठीक है कि नहीं, और इस संसार में दोस्त हैं, पत्नी बच्चे जो भी हैं, ये स्वाभाविक मिल गया है, उसको ही भगवान की कृपा मान करके स्वीकार करें। बहुत ज्यादा नया नया जोड़ने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि फिर नया जोड़ोगे फिर रह जाओगे, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर शरीर छोड़ते वक्त एक चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, मतलब चॉकलेट में अगर मन है कि नहीं एक दफे चॉकलेट खा लेता तो कितना अच्छा होता, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा चॉकलेट खाने के लिए। चॉकलेट खाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा दोबारा से। तो ये नाना इच्छाएं हमारे हृदय में इस संसार में आकर के घर करती है, यहाँ की वासनाएं, वासना कहते हैं इच्छाएं, नाना इच्छाएं, गान बजान तरंग खान पान है कि नहीं, ये हमको जो है संसार में बांध देती है, हमारे इस लक्ष्य को तोड़ देती है। सत्संग में बैठे होते हैं तो इच्छा होती है, नहीं नहीं हमने जाना है, सब हाथ खड़ा करते हैं, हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, है नहीं, हाथ खड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं सब। तो अरे भाई भव सागर पार कौन जाएगा, कौन जाएगा दो दफे। यह कलयुग धन्य है, क्यों धन्य है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर हरिनाम रूपी नाव लेकर अवतरित हुए हैं। सुन रहे ध्यान से, हरिगुण कौन कौन अवतरित हुए हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या लेके अवतरित हुए हैं, हरिनाम। हरिनाम क्या है, बोलो हरे कृष्ण हरिनाम रूपी। इस हरिनाम को नाव की तुलना दे रखी है कि क्योंकि बैठने के लिए चाहिए ना, जिसमें बैठ के हम पार होंगे। और केवल नाव से भी काम नहीं चलेगा, देखिए नाव तो है सर्वोपरि, लेकिन नाव के संग नाविक भी चाहिए, फिर चलाने वाला भी चाहिए। तो इसीलिए जो लोग हरि बोल, जो लोग ये कहते हैं केवल हरिनाम जपने जपना पर्याप्त नहीं होगा क्या, बोले पर्याप्त तो है लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है, एक साथ ही नहीं। तो आगे क्या बोलते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिनाम को लेकर के क्या हुए हैं, अवतरित हुए हैं और ये नाव हो गई। ठीक है, हम सब अभी नाव में बैठे हैं। इस्कॉन भी क्या है, एक शाखा है भक्ति वृक्ष की। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस्कॉन भक्ति वृक्ष की एक शाखा है, नित्यानंद प्रभु के ग्रुप से निकली हुई। ठीक है कि नहीं, मेन मेन लीडर कौन थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, शिवानंद सेन, ऐसे नाना करोड़ों करोड़ों ग्रुप थे उस वक्त, और सबके हेड नियुक्त थे और सबके सब गौरांग महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे। चैतन्य महाप्रभु को इतने ग्रुप थे भक्ति वृक्ष में, जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें सब आपको ही मिलेगा सारा चीज। तो अतः जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है, आप देखिए यहां पर क्लास कर दिया कि जो पार जाना चाहता है वही है। तो आप में से यहां पर बैठे हुए भी अभी सब लोग नहीं जाना चाहते इस जन्म में, क्योंकि कितने लोगों को पता ही नहीं धाम कहाँ है क्या नहीं। कुछ नए लोग भी होंगे, कितने लोग पहली दफे सत्संग में आए हैं, यहां पर फर्स्ट टाइम, जहां आप तो आते रहते ना वैसे, फर्स्ट टाइम सुना। तो धाम लक्ष्य हमारा नहीं बन पाता है, हम सोचते नहीं नहीं अभी हम मंदिर अभी किस लिए आए हैं, शुरू शुरू में आज मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले, मेरे घर में इतना टेंशन है सब ठीक हो जाए, है कि नहीं। और जब घर में टेंशन ठीक हो जाएंगे, नाम लेते लेते मंगल होने लगेगा, और जो टेंशन है वो भी अपने किए हुए कर्मों का ही फल है, हमने जो कर्म किए थे उसका ही फल का कारण है टेंशन है हमारे घर में, सीधी सी बात है। अब हरिनाम जपेंगे, सच्चा जीवन बिताएंगे तो वो सब टेंशन क्लेश दूर हो जाएंगे भगवान की कृपा से। और जब टेंशन दूर होंगे तब जाकर के अगर उसके समझ में आया है सत्संग, तब उसका लक्ष्य बन पाएगा, हाँ मुझे धाम जाना है। अभी केवल जाना है, जैसे कितने लोग बोलते हैं हाँ मुझे नौकरी पानी है बस, लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, अभी धाम गए नहीं है, अभी जाना है, लक्ष्य में भी हमारा पूर्ति नहीं हो गई। सब लोग बोलते हैं, हाथ सबने खड़ा किया, हाँ मैं भी धाम जाऊंगा, कर क्या रहे हो धाम जाने के लिए, हफ्ते में आना मुश्किल हो जाता है, हर दिन तो बहुत दूर है, हफ्ते में आना, ठीक है कि नहीं, हफ्ते में भगवान का सत्संग सुनना, भगवान का दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। आज ठाकुर जी ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, थोड़ा थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, घर ही पीछे बैठ जाइए, ऑरेंज ड्रेस ना, येलो है, येलो ड्रेस, पीला ड्रेस है, उसके ऊपर मुख्य ड्रेस बताना होता है, मुख्य ड्रेस क्या है, मुख्य है कौन सा, ऑरेंज नहीं है, येलो, उसको गोल्डन एरिया में बोलेंगे, ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर फिर ऑरेंज के बॉर्डर है, साउथ दिन से है, पीला बेड से, वो टोटल ऑरेंज नहीं देख के आओ, ऑरेंज का मतलब होता नारंगी कलर, अच्छा
पीला,
हाँ तो आगे ना येलो है, मेन मेन है येलो, मेन है उसको येलो, पीला बोलेंगे, पीला ड्रेस, थोड़ी गोल्डन पीला, थोड़ा गाढ़ा वाला पीला है, ठीक है कि नहीं, और उसके ऊपर पट्टियां क्या है, और हल्का सा वो, तो वो फिर इनकी ऑरेंज कलर की, थोड़ा ग्रीन कलर की इस रंग से है, ठीक है कि नहीं। और पीछे बैकड्रॉप क्या है, फूलों का व्हाइट ड्रॉप, व्हाइट है, व्हाइट बैकड्रॉप का मतलब होता है ऊपर से जो नीचे गिरता है पर्दा, उसको इंग्लिश में बैकड्रॉप, ये किसने बनाया नहीं होगा, ये इसको उनके भक्त ने बनाया, बैकड्रॉप जो ऊपर से गिरता है नीचे को, तो वो है व्हाइट कलर का, है नहीं। तो इतना आसान नहीं बोल दिया हमने, प्रभु जी इधर को आ जाओ, माता इन लोग सब इधर को आ जाए, हरि बोल, इधर बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा इधर को आगे आ जाओ, थोड़े थोड़ा और आ जाए, इधर तक आ जाए, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, तो बाकी इधर को आ गए हैं सब लोग, ऐसे करके बहुत जगह है। तो अतः जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ। ठीक है, जो जाना चाहता है, पहली शर्त है, जिसके मन में प्रबल इच्छा हो गई है, जाना चाहता है जो, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो सत्संग सुन के, ये महिमा जान करके, इस संसार के डंडे खाए हुए हम लोगों ने बढ़िया से, तो फिर जो है नहीं जाना चाहेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये मत बोला कि बच्चे को कौन देखेगा, वो घर में जो है ये कपड़े सुखाने आए थे, छत सुखा के आए थे, कौन उसको उतारेगा, ये मत बोलना फिर। ठीक है, वो कोई भी उतार लेगा, वो चिंता मत करना, हम नहीं रहेंगे। आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो कौन उतारता है कपड़े, कौन बच्चे को पालता है, तो ये बहाना नहीं चलेगा फिर। अगर मन वहां है कपड़े उतारने में, तो बोलेंगे ठीक है एक दफा और कपड़े उतार लो, एक जन्म और थोड़ा कपड़े उतारते रहो, ये मन निष्ठा। हरिबोल हरिबोल, थोड़ी देर बाहर ही रख लो, जरा देर पर बाहर, जरा अभी खड़बड़ खड़बड़ नहीं, हाँ अभी हम रख लेंगे, हैं बाहर रख दो, सब अंदर रखवा देंगे, फिर रख नहीं पाएंगे ना, अभी क्लास चल रही है। तो जिनकी पार जाने की इच्छा है, जो चाहता है, वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ। ये घाट क्या है बताओ, ये इस्कॉन आंदोलन, ये मंदिर घाट है, घाट समझ रहे हैं, वो हरे कृष्णा मंदिर में आ जाओ, ये घाट है, नदी के किनारे घाट होता है ना, घाट जहां से नावें चलती हैं, तो ये घाट है भैया, यहां आ जाओ। तो आप लोग घाट तक तो आ गए हम, ठीक है। अब प्रबल इच्छा है कि नहीं जाने की, कपड़े उतारने की इच्छा है कि जाने की इच्छा है, अब आप लोग जान लो, ठीक है। केवल कपड़े उतारना ही नहीं, और भी, मेरा बॉस क्या कहेगा, सर्विस जाना था मुझे, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारी इच्छाएं हमको इनके भी डरा भी रही, क्या होगा कल क्या होगा, हमको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, हम शरणागत नहीं है, इसलिए ये सब सोचते हैं फोकट की चीजों को। जब मेरे प्रभु यहां तक ले आए हैं, हमने इच्छा की थी, सच बताना, हम भक्त बनेंगे इच्छा की थी, फिर भी यहां तक ले आए, तो बताओ अब इच्छा करेंगे तो क्या नहीं कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे भगवान, आप केवल उन्होंने जो आज्ञा दे रखी है उसको पालन करें, बस केवल इतना हमारा, हमारी जिम्मेदारी हम निभाएं, बाकी भगवान अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उद्धार हम अपना नहीं कर पाएंगे, उद्धार वही करेंगे। तो आ गए सब लोग घाट पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो बड़ी बड़ी नावें हैं, भगवान भगवान चाहे तो समुद्र के बराबर नाव बनाए, सब बैठो, जितने बैठो, डूबेगी भी नहीं, चलो। और बोलते हैं जहां पर नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है, ये नाम रूपी नौका, इस्कॉन मंदिर में आते ही चार चार भक्त लग जाते हैं, प्रभु जी भला लिया आपने, क्या पीछे पड़ गए, प्रभु जी हमको बोलो ना, ये सब पीछे पड़ जाते हैं, अरे भाई नसीब समझो अपना नसीब, तुमको तो तुमको पीछे पड़ना चाहिए, ये चार भक्त तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं कि माला है कि नहीं है, माला करोगे कि नहीं करोगे, चलो मेरे संग, बोले पैसे नहीं लाए, बोले कोई चिंता नहीं मैं दूंगा अपनी तरफ से, प्रभु जी दरअसल बात है ना मेरा मन नहीं अभी, अच्छा बदमाश अभी बोल रहा था पैसे नहीं है, मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूं, उसमें मेरा मन नहीं है, तो और डंडे खाने की इच्छा है, मन नहीं का मतलब है और संसार के खूब ठंडे खाना। सीधी सी बात है, जिसका भगवान के भजन में मन नहीं है वो समझ लेना चाहिए संसार के राहु केतु शनि उसको और सताएंगे और साढ़े साथी लगेगी। ये भूत को तैयार रहना, बिल्कुल मान के चलना 100%। घोड़े की नाल पहनना पड़ेगा, फिर जो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपेगा घोड़े की नाल पहनो, ठीक है, और हल नहीं होगा पूरा पूरा उससे। इसी को बोलते हैं भचा के, इस गुरु के उस गुरु के चक्कर में वहां जाना, उस बाबा के चक्कर में जाना वहां जाना, भाग रहे हैं भैया क्या करें बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो भैया हरिनाम जपने बोले नहीं, उसको जपने के लिए टाइम नहीं। डॉक्टरों के चक्कर लगाने के लिए कोई बोल देगा वहां इतना बढ़िया डॉक्टर है मेरा सर्दिया इलाज किया, बोलेगा हाँ मेरे को भी ले चलना भैया, बोलेगा 3 बजे, बोले 2 ही बजे मत आप तो आ जाना है, पर यहाँ नाम जपने के लिए 9 बजे, प्रभु जी 9 बजे थोड़ा और लेट नहीं हो जाएगा। क्लास अगर किसी को बोला जाए 2 बजे से शुरू होगी, बोले बहुत अच्छा किया भैया, सवेरे सवेरे ना सोने की ठंडी के अड्डे। तो जिसको जाना है उसको उठना पड़ेगा, ये शर्त है। और सच बताइए उठने के बाद कितना आनंद है, बिस्तर के अंदर गंध में आनंद है कि उठने से आनंद है, बताओ। बिस्तर में तो आलस है, वहां और कुछ नहीं, समय निकल जाएगा। तो मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ, जहां पर नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है, यहां मालाएं टंगी हुई हैं, झोलियां टंगी हुई हैं, गुरु लोग तैयार हैं। बोले भाई दीक्षा देने के लिए तैयार हूं, आओ। ये व्यक्ति ये बहुत अच्छा नाम जप रहा है, देखो 1 साल से बहुत अच्छा नाम जप रहा है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। दूसरा बोलता मैं 5 साल हो गए मेरे को दीक्षा नहीं देने। बोले बदमाश तू, इनकी 6-6 महीने में एक दफे आता है, तो सीरियस नहीं है। 5 साल, बोले 5 साल गिनते रहो तू अपने, ये 1 साल हुआ इसको देखो, ये परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल आज्ञाकारी है और इसकी लालसा से पता चल रहा है, उसको जल्दी दीक्षा मिल जाती है। समझ रहे हैं, व्यक्ति लटके रह जाता नहीं तो बोलते हैं वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ, जहां नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है, स्वयं गुरु जी इसके नाविक हैं। अब गुरु जी कौन है बताओ, नाव पे तो मिल गई नाव, तो गुरु जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु गुरु जी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु तो जगत गुरु है, महाप्रभु है सारे प्रभुओं के महाप्रभु। गुरु कौन है? जो हम लोगों ने गुरु बना रखे वो गुरु है, प्रभुपाद कैप्टन है, ठीक है। तो अभी जिनको आपने गुरु बना रखा है वो आपके कैप्टन है, अभी डायरेक्ट प्रभुपाद जी भी नहीं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो गुरु प्रभुपाद जी को समर्पित हैं, ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद उनके बिहाफ पर। तो गुरु जी नाविक हैं, क्या करेंगे, जो हरिनाम संकीर्तन रूपी चप्पू नाव चलाने वाला डंडा हाथ में लिए हुए हैं। गुरु जी नाविक हो गए क्योंकि उसने कहां जा रहा है, नहीं तो नीचे को जा रहा है ऊपर जा रहा है, कहां पर भंवर है वो सब देखना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला भंवर में ही नाव डाल दी और नाव सीधे नीचे। समझ रहे हैं, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र करते करते आप भौतिक इच्छाओं को साथ में लिए तो एक भंवर है, कहां चले जाओगे सीधे, फिर नीचे। आप बोलोगे मैं तो महामंत्र जप रहा था लेकिन गया कहां, बोले सीधे भंवर में, भंवर पड़ा और सीधे नीचे। इतना अच्छा नाम होने पर भी कहां चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, ये भंवर है। तो इसलिए एक नाविक चाहिए जिसको एक्सपर्ट हो, जिसको पता है आगे भंवर है, आगे ज्यादा पानी है, आगे गहरा है, इधर करना है, बहाव इधर को है, ठीक है कि नहीं, हमें पता नहीं, इसलिए गुरु बनाया जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। तो गुरुदेव क्या है, नाविक है और हरिनाम संकीर्तन रूपी चप्पू डंडा, जो जिससे ऐसे ऐसे करते ना आगे को बढ़ाते हैं जिससे, तो भक्ति आगे कैसे बढ़ती है बताइए, संकीर्तन करने से, नाम जप से और श्रवण से। फिर से उदाहरण दोहरा रहा हूं, 2-4 दिन अगर भोजन नहीं करोगे, प्रसाद नहीं पाओगे तो क्या हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। तो 2-4 दिन भी अगर सत्संग नहीं सुना, नाम माला ठीक से नहीं जपा, बोले फिर कल कर लेंगे, आज छूट गई शादी के चक्कर में, है कि नहीं, कल फिर पता चला 16 तो करनी है, 16 और कहां कर पाएगा वो, 16 में महारोगी है वो दवाई खाने में, तो पेंडिंग करते करते वो 32 हो गई, 44 हो गई, 60 हो गई, समझ रहे हैं, नहीं कर पाए तो रोगी हो गया ना, मतलब क्योंकि अगर दवाई की डोज ठीक से नहीं लेंगे हम, तो हम जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो बोलते हैं
कौन बढ़ेगा? संकीर्तन रूपी चप्पू, ये जो जो हरिनाम है, संग में जो हम कीर्तन करते हैं उससे हमको ज्यादा बल मिलता है। इसलिए संग में जप करना चाहिए। अकेले अकेले भी ठीक है, जब उस योग्य हो जाए कि आपका मन धन स्त्री और संसार के भोगों में ना जाए, बिस्तरे में ना जाए। अकेले में जप करने में आदमी का यही होगा कि धीरे धीरे सब सोए हैं, मैं भी सो जाऊं, मन यही कहेगा, या कुछ उल्टी चीजों का ही चिंतन आएगा उसको, नाना। जैसे संग में जप करने से लगता है वो कितना अच्छा जप कर रहे हैं, देखो मैं सोया हूं, अलर्ट रहता है व्यक्ति, तो संग में जप ज्यादा अच्छा होता है। तो संकीर्तन रूपी चप्पू जो नाव चलाने वाला डंडा है हाथ में लिए हुए हैं, इसीलिए गौरांग महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग संकीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन शोभा यात्रा जो होती है ना, हरिनाम संकीर्तन यात्रा, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। और उसमें कैसे कैसे लोग पार हो जाते हैं देखिए, इस घाट पर जड़ लोग, जिनको बिल्कुल भी भगवान के प्रति रुचि नहीं है उसको जड़ बोलते हैं, दैड एकदम बिल्कुल सांसारिक भोगों में आसक्त है, पूर्ण रूप से लिप्त है, ऐसा व्यक्ति अंधा, अंधा मतलब जिसको ये ज्ञान ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको अंधा, या आंख से सचमुच में भी अंधा हो तो वो भी पार। जैसे एक डॉग, एक कुत्ता अगर रेल में बैठ जाए बिना टिकट लिए भी तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है ना, चला जाएगा अपने आप ही। तो यहां पर अंधा व्यक्ति भी अगर इस इस्कॉन मूवमेंट में बिना आर्गुमेंट किए, बिना तर्क वितर्क किए आ जाएगा, अंधा भी यहां पर आके तर सकता है। क्यों? उसको केवल मुख से नाम जपना है, कान से सुनना है, बस दैट्स ऑल। उसी से भगवान उसकी आंखें ऐसी बनाएंगे कि वो भीतर ही भीतर दर्शन करेगा प्रभु के। सारा दोष अपने में ही है, याद रखना, क्योंकि हमारी भक्ति ठीक नहीं है, हमारा विश्वास ठीक नहीं भगवान में। सारा दोष मेरा है और किसी दूसरे का दोष नहीं है, सारा दोष। तो जड़, अंधा तथा कातर, जो कोई भी क्यों ना हो, कातर मतलब पापी लोग, जो नाना प्रकार से पाप में लगे हुए हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब है ना, ऐसे लोग भी अगर वो इस संकीर्तन में भाग ले लें, जैसे रथ यात्राएं निकालते हैं ना, उसमें सारे जड़ अंधे और कातर लोग ही तो भाग लेते हैं, सब शुद्ध लोग थोड़ी भाग लेते हैं, तो भक्त लोग जाते हैं या जो जिनको प्रचार किया जा रहा है, बाकी सब जितने भी रोड में सब नाना प्रकार, कोई अंडा खाने वाला भाग लेता है उसमें, कोई चिकन खाने वाला, कोई गाय खाने वाला, कोई सुअर खाने वाला, ठीक है कि नहीं, सारे मुसलमान भी सब उसमें थोड़ा बहुत जैसे तैसे। हम लोग अभी गए थे सहारनपुर, तो वहां एक मुसलमान भी खड़ा था वहां पर, वो देख रहा था क्या करते हैं जरा, क्योंकि आखिर देखते तो जैसे हम लोग भी कभी कभी देखते हैं मुसलमान लोग क्या करते हैं, तो दोनों को सोचना ये चाहिए कि मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान वही करेंगे जो सजदा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? बोले अल्लाह को। बोले अल्लाह कौन है? बोले एक शक्ति है। बोले शक्ति कौन है? वो कृष्ण ही तो है, तुम्हारा अधूरा ज्ञान है, कोई अलग थोड़ी तुम्हारे भगवान, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो भी उसको मैंने हरे कृष्णा बोला, तो जोर से बोला उसने हरे कृष्णा, रहा नहीं गया उससे, क्योंकि देख रहा था वाह क्या आनंद में है भक्त लोग, ये गारंटी है। वैसे अगर आप अकेले उसको प्रचार करोगे, बोलेगा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुओं का नाम लेना काफिर होता है। लेकिन ऐसे उसने बोल दिया एकदम बड़े मजे से, हरे कृष्णा बोल रहा था वो, पूरा धारी लगा, पूरा मुसलमान, एकदम प्रॉपर मुसलमान था वो पक्का, फिर भी उसने हरे कृष्णा बोला, क्योंकि रहा नहीं गया, सब लोग बोल रहे, उसने देखा, क्योंकि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं दुनिया में, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जड़, अंधा, कातर, जो कोई भी क्यों ना हो, उसे निशुल्क ही पार कराया जाता है। यहां पर शुल्क नहीं लिया जाता है कि दीक्षा का इतना पैसा लगेगा, इसका इतना ही लगेगा, कोई लगता है इस्कॉन में आने का पैसा लगेगा जी, प्रसाद फ्री में खिलाया जाता है। देखिए हम लोगों में से कितने लोग हैं जो भक्तों को प्रसाद एक दफे खिला चुके हैं, हाथ खड़ा करना ऊपर जो मंदिर में सवेरे होता है, एक माता रानी, आप लोगों से निवेदन है, मैं निवेदन करता हूं, कभी अपनी शादी की सालगिरह में, बच्चों के जन्मदिन पर, या कैसे भी वैसे भी कभी निकालिए 10-15 हजार रुपए अलग से बनाइए और भक्तों को प्रसाद खिलाओ। ये है जीवन, हम पाते तो सब है ना हर दिन, तो लेकिन हमें खिलाने का भाव भी होना चाहिए कि हमारे धन का शुद्धिकरण हो, कभी जीवन में से बनाना चाहिए, क्योंकि अनेक जगहों के लिए हम पैसा बना ही लेते हैं जैसे तैसे, फीस के लिए बना ही लेते हैं, डॉक्टर के लिए बना ही लेते हैं ना, इधर उधर से जुगाड़ कर करके, मोबाइल के लिए भी बना लेते हैं। सच बात है कि नहीं, जुगाड़ू लोग हैं हम लोग दिल्ली वाले, सब जुगाड़ू कहे ना कैसे जुगाड़ कर लेते हैं। कपड़ों के लिए नए कपड़े थोड़ा सा भी फट जाए देखो हम जुगाड़ कर ही लेते हैं पैसा बना बनू करके। तो जरा ये असली चीज के लिए जुगाड़ बनाए, ठीक है। दुखी मत होना जिनके नहीं हो सके ना हो, लेकिन अगर मन में ठान लो तो क्या नहीं हो सकता है। जिसकी सेवा की वृत्ति है ना, इच्छा है, वो बोलेगा प्रभु जी खीर का पैसा मेरे से ले लीजिए, पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना, जैसे भगवान का इतना माला प्रतिदिन माला है। हम लोगों ने पंजाबी बाग में क्या किया था कि जितने भी लोग वहां सैटरडे प्रोग्राम में आते थे, जो भी कार्यक्रम है, सब जैसे 1000 लोग हैं, सबसे प्लच प्लच करवाया था कि आप लोग महीने महीने जो कमाते हो उसमें से कुछ धन भगवान के लिए निकालोगे। और उसमें मंदिर के अंदर भी भक्त जो लोग जैसे जो ले रहे हैं, जैसे वॉचमैन है ये, उनको भी बोला था, वो भी अपने में से, क्योंकि मैंने कहा ले तो रहे हो, थोड़ा सा देने का भाव भी, यानी कि थोड़ा सा रखो। तो ऐसे करके जिसका आमदनी था 1,00,000 रुपए बचता था जिसको, उसने बोला मैं 10,000 रुपए भगवान के लिए निकालूंगा। 90,000 अपने लिए रख रहा है, कम है क्या? समझ रहे हैं? तो यहां तो पूरा पूरा बोले 1 रुपए भी, वो ज्यादा कंजूस होता है जो लाख बचता है जिसको, ठीक है कि नहीं। और जिसका 30,000 सैलरी है उसको कम से कम क्या करना चाहिए, 1,000-2,000 भगवान के लिए निकालने चाहिए अलग से, ठीक है कि नहीं। और जिसका 15,000 है वो भी 1,000 निकाल सकता है, जिसका 10,000 है वो 500 निकाल सकता है। वैसे तो आधा बता रखा, आधा नहीं तो इतना तो, ये हमारी वृत्ति कब बनेगी? हम ना अखबार के लिए, न्यूज पेपर के लिए पैसे जाते ही है हमारे, ठीक है कि नहीं। ना दूध के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, उसके लिए जाते हैं, कितना लंबा चौड़ा। तो ऐसे करके हमें निकालने चाहिए। हमने प्लच करवाया था, आप कितने? 500, वो हर महीने देगा फिर वो, ऐसे करके। हाँ कभी किसी का मान लिया बिजनेस डाउन हो गया या उसकी तकलीफ है तो फोन करके बता देगा प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा 2-4 महीने। और सच बताऊं जो भगवान के लिए निकालेगा मैं गारंटी देता हूं उसका बिजनेस कभी डाउन, ये कोरे कागज पे साइन करके लिख देता हूं। हम आमदनी का ढंग नहीं जानते हैं। दो और लो, यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा। आप कृष्ण को दो और कृष्ण को लो, कृष्ण उतना और तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन हम जो है कंजूस बन जाते हैं, नहीं नहीं वो नाम जपेगा ही नहीं, पहले ही सोच लेते हैं नहीं वो गीता लेगा ही नहीं, नहीं नहीं वहां तो लोग सत्संग में आएंगे ही नहीं, तो क्या करें घर में बैठे बैठे टीवी देखें। लगना है सेवा में, कोई आए या ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से 2-3 हफ्ते बाद मैं भी आप लोगों से अपना मन बना लीजिए, प्लच कराऊंगा, ठीक है, जितना आपका मतलब वो हो सके। और वही आपके असली बैंक बैलेंस है, क्या है? एक फॉर्म भरवाएंगे, उसमें से अपने आप ही महीने में दे जाना, आपको रसीद काट के आपके हाथ में रसीद के साथ, कितना बढ़िया होगा। आपको भी संतुष्टि लगेगी, यार मेरा जीवन धन्य हुआ, कुछ मैंने भगवान के लिए निकाला, लेकिन हर महीने देना है। हाँ जब आपको प्रॉब्लम आ जाए तो बता देना प्रभु जी थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं 2-4 महीने में। और भगवान तो देख रहे ना, भगवान प्रॉब्लम नहीं करते ऐसे भक्तों को कभी भी, कहां से नैया उबार देते हैं। आप मानोगे नहीं, एक रिक्शे वाला मेंबर बना जिसकी भावना हो जाती है बनने की, कितना कमा लेता है रिक्शे वाला बताओ। एक दिन में 30-40-50 रुपए उसको बचते हैं, 60-70 रुपए। उसने क्या किया, मेहनत करी और 150 रुपए बोलता था, प्रभु जी मैं 50 रुपए एक दिन में अलग निकाल लेता था और 100 रुपए में 150 रुपए मालिक को देता था, 100 रुपए में अपना घर गृहस्थी चला करके 50 निकालता था, महीने में कितना हुआ 1500। आप मानोगे नहीं 1500 करके मेंबर बना है महीने में। और यहाँ जो हजारों रुपए पा रहे हैं उनके नाना नखरे, वो बोलेंगे मैं नहीं नहीं यहां से नहीं निकलेगा, दुनिया में लगाने को तैयार है। रिक्शे वाला, रिक्शा चलाने वाला 1500 रुपए करके मेंबर बना। ये मेंबर बनने का मतलब क्या है, आपको कार्ड तो मिल जाता है, ठीक है कि नहीं, किताबें भी मिलती हैं, आपको विशिंग आता है, कहीं जाते हो तो पहले अगर बुक कराओगे तो वहां गेस्ट हाउस भी मिलता है 15-20 दिन पहले। लेकिन आप एट अ टाइम यानी कि दौड़ोगे जन्माष्टमी में एक दिन पहले तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो मिलता है, कोई ऐसा नहीं। तो नाना सुविधाएं हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक बात बता रहा हूं, जिसको करना है उसके पास में बहाने बिल्कुल नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसके बहाने ही बहाने। पैसे सारे पड़े हैं बैंक में, पता चला 2 करोड़ रुपए है, स्वामी जी ऐसा है ना अभी पत्नी मना कर रही है, लो सीधा बस हो गया। पत्नी आंख दिखाती है लंबा करके। वॉशिंग मशीन मंगाई थी मैंने, उसको छोड़ के वहां देने के लिए बड़ा पैसा है, वहां देने के लिए बड़ा पैसा है, और क्रेस कर देगी घर में, 3 दिन खाना ही नहीं देगी। भैया वॉशिंग मशीन लाओ। बोले स्वामी जी थोड़ा सा रुक जाइए, बिना बताए करूंगा। फिर क्या कहा, ऐसा भी करते हैं लोग। कम से कम मैंने जो मेंबर 1000 मेंबर ऐसे होंगे मैंने जो बना रखे जो बिना बताए किए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, जरूरत क्या है बताने की बताओ। सुगम अति शीघ्र, जिसमें क्रेस पड़ता है बताने की जरूरत ही नहीं है, हम तो धाम कभी निकल पाएंगे हम। फिर क्या करें बताओ, क्लेश ही क्लेश डालने में लोग माहिर हैं बिल्कुल। नहीं नहीं आप इतने दिन से बताओ, मैंने पैसे मार ले तो नहीं, वहां के लिए फट से तैयार है, क्यों नहीं होंगे, तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन ही दाव पे लगा रहा है। फिर सारा पैसा तो तुमको ही खर्च कर रहा है, और वहां के लिए 1 दिन निकाल दिया तो प्रॉब्लम क्यों हो गई। तो इस प्रकार से बुरा नहीं मानिएगा, है ये सच बता रहा हूं मैं आपको। 80% माताएं जो है मना करती हैं, 20% हाँ बोलती हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, 80% लेकिन मना कर देती हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम दिन रात पब्लिक में जाते हैं ना। तो आगे बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल। अब जब प्रैक्टिकल करोगे तब भक्ति का फल आपको मिलेगा। तो इस घाट पर जड़ अंधा कातर जो कोई भी क्यों ना हो उसे निःशुल्क ही पार कराया जाता है। पदकर्ता श्री लोचनदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब जीव तो प्रेम की हवा के स्पर्श से ही पार हो गए। देखिए सारे जीव प्रेम की हवा से क्या हो गए, हवा से ही नहीं, स्पर्श से, खाली छूने मात्र से। कौन सी हवा, संकीर्तन की हवा। जब संकीर्तन होता है ना, भक्त लोग जब निकलते हैं उस संकीर्तन की जो वाइब्रेशन है, उसकी तरंगे हैं, वो हवा से मिक्स होकर के जिसके भी मुख पर पड़ेगी, चाहे मुसलमान हो, चाहे जड़ हो, अंधा हो, कातर हो, जिसके भी नाखों में पड़ा हो, उसको आभास हुआ भगवान है। हाँ, ये भक्त कितने आनंद में है देखो, ठीक है कि नहीं। और वही शामिल हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देख रखे हैं जो ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल लंगड़ा टाइप में था, लेकिन हरिनाम में कैसे चल रहा था पता है, ऐसे 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 चल रहा था। मैंने बड़ा खुशी हुई मेरे को, आहा सही में। मैंने कहा तुम तो असली में नाच रहे हो, पूरा उसमें ऐसे करके। और आपने देखा होगा अभी हम लोग 26 जनवरी के कार्यक्रम में गए थे, तो वहां एक कुत्ता, व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट कुत्ता भी देखो, एकदम हंस की तरह पूरा व्हाइट। आते ही उसने सबसे पहले, जब कोई पंडाल में नहीं था उस वक्त, 3 लोगों के संग आया, पूरा प्रणाम किया उसने। मैं देख रहा था ऊपर, क्योंकि हम ऊपर बैठे हुए थे स्टेज में, पूरा प्रणाम किया, और प्रणाम करके लोग भगा रहे थे, बार बार आगे ही बैठा था, और पूरा प्रोग्राम सुना उसने, गया नहीं वो। जिसने खदेड़ा उसको ना, उसको भी प्रेम आ गया बाद में, क्योंकि वो इतना सुंदर था। सही, वो बार बार मुंह मुंह करके फिर वहां आ जाता था। वो आपका था ना, देखिए संगम बिहार, संगम बिहार से आया था, बस में, बस में देखो। अरे एक कुत्ता, लेकिन मैं अपने अनुभव से, ये भी देखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग कभी कभी ना प्रोग्राम में होते, लेकिन हमारी चेतना पता नहीं कहाँ होती है। कोई स्त्री पुरुषों को देखती है, पुरुष स्त्रियों को देखता है, अरे देखो लेकिन भक्त रूप में देखो। एक कपड़े शॉल वॉल देखना बहुत हो गया, असली चीज देखो। जहां सत्संग में भी जाते हो ना, तो ओरिजिनल चीज देखा करो वहां। खाली एक एक यानी कि क्या भोगों वाला चीज नहीं देखना है, असली चीज देखना है। क्या चीज देखना है हमने, मैं आश्चर्य हुआ देखो। मैंने कहा वो डिवोटी है, वेद व्यास जी बोल रहे थे जिनका फार्म हाउस है, मैं उनके संग बैठा था। बोले थे कुत्ता। मैंने कहा प्रभु जी वो शुरू से आया, उसको बस रहने दीजिए, वो भी कुछ नहीं बोली। देखो भगवान कि सबके हृदय में उनका, वेद व्यास प्रभु जी का एक सेक्रेटरी है, मोटे मोटे ना, वो तो हम लोग को नहीं छोड़ते हैं। वो कोई उसको पता नहीं, महाराज भी है तो उसको अगर वेद व्यास जी बोल देंगे तो महाराज को ही साइड कर देगा हाथ पकड़ करके, कोई उसको एटिकेट नहीं है। लेकिन वो भी कुत्ते को नहीं भगा पाया। सच में भगवान ने उसके मन में भी डाला, मेरा क्या बिगाड़ है। आगे बैठा था कुत्ता एकदम पूरा बढ़िया से, पूरा सुनाओ आनंद से एकदम। मैंने कहा ये है डिवोटी। देखो वो खाने के लिए भी नहीं गया, पकौड़े पनीर पकौड़े मिल रहे थे, नहीं गया हूं। सच में पूरा सत्संग सुना उसने लास्ट तक, ड्रामे भी देखे। और मैं गारंटी देता हूं, देख ला अगले जन्म उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्त के घर में जन्म मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। कुत्ते से क्या है, तो शरीर एक कुछ ऐसे कर्म हो गए होंगे जैसे कुत्ता का शरीर मिल गया, लेकिन फिर भी भगवान ने कुत्ता में रख करके उसकी चेतना को भक्तों के बीच में रखा। देखिए जड़ अंध ऐसे लोग जब पार हो गए और हम अगर ज्यादा स्याणे बनेंगे, स्याणा स्याणा जो है भक्ति में नहीं चलता है प्रभु जी। मन क्रम वचन छोड़ सब चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। जितना भी आप ये मत सोचना कि मैं अपने भजन से पार हो जाऊंगा, मैं डेली मंगल आरती आता हूं पार हो जाऊंगा, नहीं, उस पर भी भाव ये रखना है डेली मंगल आरती आता हूं प्रभु मेरा छूटे ना, प्रभु मुझे विनम्र बनाए रखना, मुझे अहंकार ना आए कि देखो ये बेकार है, वो तो आता ही नहीं, वो ऐसा है, ये मेरे मन में भाव ना आए दूसरों के लिए, ये कृपा बनाए रखना है प्रभु। बस सदन से प्रार्थना करते ना तो एक प्रार्थना ये करनी कि प्रभु जी आज जैसे माला हुई मेरी अच्छी, कल भी मेरा मन लग जाए माला में अच्छे रंग से, बस अपने नाम में मुझे प्रेम दे दीजिए, अपने में भक्ति दे दीजिए, ये मांगना है। तो बोलते हैं सब जीव तो प्रेम की हवा के स्पर्श से ही पार हो गए, परंतु मैं अपने कर्मों के कारण यहीं पड़ा रह गया। पड़िया रहिलो लोचन आपन आरे दूसरे, लोचन दास ठाकुर बोलते हैं मैं अपने ही कर्मों के कारण पीछे सोइए मत, अरे बोल माताएं टेक छोड़ दीजिए, जो टेक लिए ना इसे बढ़िया नींद आएगी, फिर प्रसाद पाया है तो हीरा कोई और चोर ले जाएगा, आप खीरा चोर बनोगे, खाली मूली चोर बनोगे। हाँ जी फिर ध्यान से आप भी जी आंख बंद मत कीजिए, मैं उठा दूंगा फिर। हाँ आंख मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर सब आंख बंद कर दे तो फिर मैं भी आंख बंद कर दूंगा, आंखें बंद नहीं करनी है, ये क्लास चल रही है और भगवान धाम जाने की तैयारी हो रही है इस क्लास से, याद रखना ये घाट है गौरांग महाप्रभु का, यहीं से आप चैतन्य महाप्रभु के धाम गए हो, अब ज्यादा इतराए नहीं हम, आप यहां मंदिर आए, भक्तों से मिले, उन्होंने आपको हरि कथा सुनाई, आकर्षित हुए, तब आप धाम गए हो, तब आपको गुरु मिले हैं, तब आपको इतना बड़ा साम्राज्य मिला है, और अब अगर आप भक्तों की कृपा नहीं पाना चाहोगे तो कृष्ण भी क्या कर देंगे, भूल जाएंगे आपको, जो उनके भक्तों को भूलता है कृष्ण उसको भूल जाते हैं, याद रखना, ये याद रखिएगा कभी भी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ ऑलवेज सभी वैष्णवों का, हे वैष्णव ठाकुर आपकी कृपा से मुझे ये पता चला, आपकी कृपा से ये पता चला मुझे, है कि नहीं। तो पदकर्ता श्री लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि सभी जीव तो प्रेम की हवा के स्पर्श से ही पार हो गए, परंतु मैं अपने कर्मों के कारण यहीं पड़ा रह गया। वाह वाह, लोचनदास ठाकुर का इतना ऊंचा भाव है, उत्तम हैया अपना के अधम माने, इतने ऊंचे हैं लेकिन अपने आप को गिरा हुआ, और सच में मान रहे हो, केवल भाषा की शैली से आपको रिझाने के लिए नहीं बोल रहे कि जैसे लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका अकिंचन अकिंचन, ठीक है कि नहीं, आपका अकिंचन दास, दासों में दास महादास कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं ना, प्रभु जी क्या बोलते हैं आपका पामर, मतलब पामर मतलब जूतों का तलवा, लेकिन उनको बोलो एक आज्ञा दे दो, बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, जबकि आज्ञा उसी के हित के लिए होगी, है कि नहीं। तो ये केवल हमारे में शब्द ही रह जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन ये सच में अपने आप को लोचनदास ठाकुर सच्ची में बोल रहे हैं ये कि मैं अपने कर्मों के कारण हे प्रभु पड़े रह गया है, वो सच में बोल रहे हैं, इतने ऊंचे वैष्णव हैं, देखिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हरिनाम चिंतामणि से हम लोग 10 प्रकार के नाम अपराध लिए हैं, नाम अपराध के साथ में अभी सेवा अपराध चल रहे हैं,
और सेवा अपराध के साथ में फिर वैष्णव अपराध भी हैं,
उसको अभी बताएंगे आपको लास्ट में, उससे पहले थोड़ा सा सेवा अपराध कितने होते हैं कौन बताएगा, क्या बताया था पिछले दिन में 64 प्रकार, ठीक है कि नहीं, उसमें भी प्रकार बता रखा है अनेक प्रकार से, 4 प्रकार बता रखे हैं उसके, अपराधों के 4 विभाग किए हैं, पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग। तो पहला है श्री मूर्ति सेवक निष्ठ, मतलब जो मूर्ति की सेवा करते हैं उनके संबंध में अपराध, ये 32 कम से कम है। और दूसरा है मूर्ति स्थापक, जो स्थापना करता है उनके संबंध में कुछ अपराध। तीसरा है मूर्ति दर्शक, जो मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं उनके प्रति अपराध। और चौथा है इन सबको मिलाकर के, इन सबके लिए कोई अपराध। ये 4 प्रकार हैं अपराधों के, और 10 प्रकार के नाम अपराध हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है, नाम बाद में कर लेना जब कर रहे हैं।
जब बाद में कर लेना है ना, एक साथ दो काम नहीं हो सकते ना, ये भी अपराध हो जाता है जप के प्रति। ध्यान पूर्वक जप न करना पहला ही अपराध हो गया। इसीलिए हम लोग जब कभी कभी सत्संग के बीच में रोक लगाते हैं ना कि अभी माला मत करो, इसका मतलब यही है कि आप, क्योंकि एक समय में ना तो माला कर पाओगे ना सुन पाओगे, तो ध्यान पूर्वक जप न करना अपराध हो गया है जप के प्रति। उसको आपने इतना वो ले लिया अभी नहीं, उस वक्त खाना पूर्ति होती माला पूरी करना। मतलब हम देखते हैं सवेरे से शाम हो जाती है, कभी कभी शाम को सत्संग होता है तो उस वक्त लोग माला लेके बैठते हैं सत्संग में, सोचते हैं अभी सब मतलब फ्री हुए एकदम, सब सत्संग को सुन रहा हूँ तो मुझे पता ही है वही चीज तो बोलेंगे जो पहले बोल रखा था, लेकिन अभी मैं माला करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला नहीं करनी उसको, सुनना है चाहे एक ही चीज 1000 दफे सुन रहे हो कोई बात नहीं, सुन तो भगवान की चीज रहे हो ना, प्रेम वाली चीज सुन रहे हो। तो कल हम लोग पिछली दफे बताए थे पादुका पहन के मंदिर में प्रवेश करना, ये हो चुका है। उल्लंघन रूप में प्रभु के समीप जाना, एकदम मस्ती मस्ती में जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं, भगवान भी है वहां पर उल्लंघन रूप में, और गए और श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा कर ली फट से, प्रणाम भी नहीं किया। ऐसे कुछ लोग गोल घूमते ना, ये परिक्रमा करना भी अपराध है, ऐसा परिक्रमा करना, परिक्रमा होती है पूरी, न कि आगे ही घूम घूम जाओ उनके आगे, ये कौन सी परिक्रमा है, ये मनमानी परिक्रमा है। श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा करना, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना, जब आप नहाए ना हो, शमशान घाट से आए हों, या मासिक उसमें हो, या अनेक चीज से आप जैसे कहीं बाहर गए सवेरे से शाम तक, नाना लोगों से स्पर्श किए हुआ, हमने देखा है इन चीज को बहुत कम लोग दिल्ली वाले ध्यान देते हैं। दिन भर जिस ड्रेस को पहने चांदनी चौक में हजारों से टकराए हैं, कोई ना नहीं नहाया होगा, कोई मांस खाया होगा, कोई कुछ होगा, ठीक है ना, पैर गंदे बिना पैर धोए मंदिर में आ गए, शाम को सीधा अंदर चले गए, पैर धोना चाहिए, मुंह को लाग वैसे तो कपड़े बदलने चाहिए, ठीक है ना, जिससे भी स्पर्श हो गए एक दफे वो फिर धोने चाहिए कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। ये भक्ति का जीवन है, संसार में इसको कौन वो कर रहा है, बहुत कम, और इसलिए स्पर्श दोष लगता है। फिर जितने लोगों से आप स्पर्श किए उनकी जैसी जैसी वृत्तियां हैं वो आपको दोष में आ जाएंगी। सही में हम लोग क्या बोलते सहारनपुर में हमने अन्न प्रसाद पाया, वो भक्त ही थे लेकिन उतने भक्त नहीं, तो रात को कुछ ऐसे ही अटपटा दो सपने मेरे को आ गए, पता नहीं कहां एकदम फोकट गए एकदम बिल्कुल। मैंने उसका ध्यान लगाया कि सवेरे मैंने कहा ऐसा क्यों आया मेरे को, कम से कम मेरे को 3-4 साल से ऐसा कभी आया ही नहीं इस टाइप का कोई, तो मेरे को याद आया कि मैंने कल वहां प्रसाद पाया, लेकिन उसमें अनेक लोग, कोई चपाती बना रहा था, कोई कुछ बना रहा सब, लेकिन कोई माला नहीं करता है उसमें से, कुछ माला नहीं करते थे, ठीक है कि नहीं, तो उनका मन जहां जहां था, तो मैंने कहा वो चपाती के भीतर घुस के मेरे अंदर आ गया, आटा के भीतर घुस करके अन्न दोष, अन्न से दोष आ जाता है। देखिए तो उनके बारे में क्या कहा जाए जो बाहरी खाते हैं, जिनको सारे बाहर के गोलगप्पे ही पसंद आते हैं, बाहरी का सारी मिठाई, बाहरी का जो भक्त नहीं उन्हीं का सब दिन रात वही खाएंगे बस। ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से बना करके लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और या फिर भक्तों के घर जाओ वहां प्रसाद पाओ, कोई वैरायटी खानी है, ज्यादा ही मुख अगर चल रहा है तो गोविंदा राज नहीं रहा जा रहा है, क्या कहा जाए, नहीं रहा जा रहा है तो बीकानेर न जा करके कहां आ जाओ, क्योंकि बीकानेर में भी तो जिस तवे में बन रहा है उसको कुछ नहीं करते, प्याज नहीं डालते, बाकी तवा वही होता है जो अगली इससे पहली दफे जो प्याज में बनाया था, वो तवा वही होता है, ऐसे करके छोंक के देते हैं बिना प्याज का है, चेतना तो वही है। तो ध्यान रखना चाहिए, नूडल खाने अपने घर में बनाओ बढ़िया से, सीख के ले जाओ जो भक्त बढ़िया बनाते हैं उनसे पूछ लो फोन करके ना कि प्रभु जी आप कैसे बनाते हैं, वो बता देगा ये विधि है, ऐसी विधि है, बढ़िया से बना पाओ, कोई मना नहीं है। तो ये दूषित अवस्था में पांचवा, भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना, ठीक है कि नहीं, हाथ पैर धोए बिना भोजन के बाद हाथ पैर, अब आप बोलोगे ठंडी में तो हम लोग सब सॉक्स पहने रहते हैं, क्या करें बताओ इतनी दफे, तो चलो सॉक्स में अगर आप पानी छिड़क करके से जा रहे हैं, लेकिन कुल्ला करके हाथ धो करके तो जा सकते हैं भोजन के बाद, और 5-10 मिनट बाद जाना चाहिए भोजन के, मतलब थोड़ा डकार आ जाए एक आधे ना, वहां पर नहीं भगवान के पूरा मुंह खुल लगा दर्शन करते करते,
ये अपराध है ना, मतलब भगवान खड़े हैं, आप मतलब गुरु जी के आगे वो थोड़ा सा प्रसाद दे दें उसको खाने में आपको होता है, मतलब इनके सामने खाऊं ना खाऊं पीछे मुंह करके से, भगवान खड़े हैं उनके लिए कोई भावना ही नहीं है वहीं पर, जो मिला फट से आम खा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं वहीं पर, किसी कुछ भी कर रहे हैं, है नहीं ज्यादा मत, या इतनी बातें कर रहे हैं पूछो मत, बड़ी जोर जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं वहां पर भगवान के आगे, तो थोड़ा सा वहां तमीज में रहना है। भाई ठाकुर जी खड़े हैं तीनों लोगों के स्वामी, सारे गुरु के गुरु, दो गुरु आ जाए आपका बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है, सब ऐसे करते हैं, ऐसे खड़े रहना है वैसे। तो और दिन गुरु नहीं है तो भगवान सारे गुरुओं के गुरु हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो तुम सेवा? गुरु जी आए तो बरसाती मेढक की तरह फुदुक के आ गई वहां पर, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो और दिन सेवा करो तब आपको कहा जाएगा फिर भक्त, उस दिन भी भगवान वही है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, वही ठाकुर जी उस दिन भी। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये जो कुछ नियम है इनको जरूरी है करना, ठीक है। जो सॉक्स आपने एक दिन पहन लिया है और बाहर उससे घूम के आया, उसको नहीं पहनना है दूसरा सॉक्स, ताजा मतलब धोया हुआ, नहीं तो बदबू आती है पूरा वहां पर प्रणाम करने में, हजारों लोग ऐसे ही, ठीक है ना, सॉक्स जूते से निकाला पसीने से भरा हुआ है, तीन तीन दिन पहन के बदबू, और प्रणाम करना मुश्किल हो जाता है ऐसे भी, तो कितना सुखाएंगे बताओ। ये वो एक एक जो है उसमें दस दस हजार की चटाई मैट है वो जो बिछा रखी है उसमें कारपेट जो है। तो एक श्री मूर्ति के आगे, हाँ तो जैसे मैं पिछले दिन बता रहा था, कभी कभी लोग नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, नियमों की धज्जियां मतलब, अब ये तो कुछ नियम ठीक है, अब कोई बोले कि पानी पी के भी कुल्ला करना पड़ेगा, मैंने कहा ये तो पानी पी के भी कुल्ला करना है मतलब, क्योंकि ये तो नियम का मतलब अतिक्रमण हो गया, ये कहीं नहीं लिख रखा, कहां लिख रखा है हमको बता दे जरा, और लिखा भी हो तो हरिभक्ति विलास में तो क्या क्या लिख रखा है वो आपके लिए नहीं कलयुग में। अब पैर तो धोए नहीं जा रहे, अपना टॉयलेट तो साफ नहीं किया जा रहा, अगर रूम में चले जाओगे उनके एकदम बोला गंदगी से भरा हुआ तो एकदम, ठीक है कि नहीं। और नियम क्या है बोले पानी पीने के बाद कुल्ला करो, कौन सा कुल्ला करो हम जब पानी पिए, अब कुल्ला हो गया ये कौन सा कुल्ला हो, मतलब अतिक्रमण हुआ ना नियम का, ये अति भक्ति चोरे लक्षण, सही में जरूरत से ज्यादा फिर दिखाना ना वो बिल्कुल भक्ति में गिर जाने वाला बात है, फिर आगे गिरता है व्यक्ति। तो एक हाथ से दंडवत प्रणाम करना, मैं आपको बताई रखा है पिछली दफे कि एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ आगे करना है, और माला अगर है ही है तो ऐसे पीछे रख लो, प्रणाम करते हैं ना पीछे रख लो, गिरेगी नहीं पूरा करके, फिर उसको पकड़ के ऊपर उठाओ। एक हाथ से प्रणाम करना या हाथ ऐसे रख के, कभी कभी लोग सब नीचे कर देते हैं फट से, और बिना प्रणाम मंत्र किए उठ जाना, भगवान का प्रणाम मंत्र भी है, पहले गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र, जैसे गौरांग महाप्रभु के यहाँ प्रणाम कर रहे हैं आप, तो कैसे प्रणाम करोगे, सबसे पहले गुरु महाराज जी का, फिर आपको पता है वहां पर कौन है, प्रभुपाद जी भी है, भक्तिस्थान महाराज जी भी है, तो भाई बिना गुरुओं को नाक के ऊपर कैसे जा सकते हैं, जो उठ रहा है जल्दी उठने दो, हमें चिंता नहीं है, ठीक है। हाँ इतना लेट भी ना कर दें कि पता चला 10 मिनट बाद उठ रहे हैं आप, ये थोड़ा सा स्पीड में होता है वो, ठीक है। नमो विष्णु पादाय अपने गुरु महाराज जी का, फिर प्रभुपाद जी का, फिर भक्तिसिद्धार्थ महाराज जी के लिए वांछा कर वैश्य बोल दें, ठीक है, और फिर नमो महापदन्याय जय श्री कृष्ण चैतन्य भी उठ जाए। नीचे से चरणों से दर्शन करना चाहिए भगवान, सीधे मुख में भी नहीं जाना चाहिए, बता रखा है। हम जब किसी बड़े व्यक्ति के, किसी जेंटल भद्र व्यक्ति के दर्शन करते हैं ना, हम सीधा ताक करके मुंह में नहीं देखते हैं, जिधर हमारा क्या होता है, ये वैष्णव एटिकेट है, हमें नीचे से चरणों से ऊपर को देखना चाहिए उनका, ऐसे करके विधि बता रखी है, चरणों से फिर ऊपर, फिर ऐसे करके, फिर कर देने, फिर सबको देख के, और केवल भगवान गौर निताई कोई नहीं, तुलसी महारानी जी को भी देखना है, उनसे भी प्रार्थना करनी है, ललिता विशाखा जी को भी देखना है, नीचे नीचे जो आचार्य है वहां से शुरू करो, ये दर्शन लेने की असली विधि है। और थोड़ी देर खड़ा भी रहना चाहिए वहां पर, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रणाम मारा कि बाबे भाग भाग, ऐसा प्रणाम किया तो फट से दूसरी जगह भागना, उधर क्या दर्शन किए, मतलब कुछ नहीं, कोई आनंद ही नहीं लिया, भगवान अभी सजे हैं, उनका देखो तो सही, उनका मुकुट कैसा लगा है, उसमें किस प्रकार का वह है, कैसे उन्हें मोती है, क्या यहाँ इनकी गलबन पहन रखा है, क्या नीचे है, कोई मतलब नहीं, और एक दूसरे को निहारेंगे आहा जैसे कि पी जाएंगे पूरा। तो एक दूसरे को नहीं निहाना है, एक दूसरे को ज्यादा निहारोगे तो फिर वो पी जाएगा, सही में भगवान को पियो, नयना अभिराम आंखों को अपलक जो है ठाकुर जी को आप देखना, आप ऐसा आदत तो डालो भगवान को मुझे देखना है बढ़िया से, आपको फिर बिना ठीक से देखे तृप्ति भी नहीं होगी। क्यों प्रभु आगे से देखते हो ना कितना आनंद है ना, फिर जाने का मन नहीं करेगा। और कितने भक्त पता कैसा करते हैं, जैसे ठाकुर जैसे राधा पार्षदी के आगे आए एकदम आगे, वो है ना वैसे स्लिप है वो क्या करते हैं क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाते, वहीं पर ही चरणों की मालिश हमेशा करता है कोई एक भक्त हमेशा वहीं पर ठाकुर जी को मतलब मालिश कर रहे हैं चरणों की, आप इतनी देर से हमको खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं मालिश करता है। ये भाव है, भगवान सब स्वीकार करते हैं प्रेम से। ये मत सोचना कि केवल लाल ड्रेस वाला ही तरेगा, सन्यासी ही तरेगा। भैया बोलते हैं एक भजन में, तरेगा वही नर जिसके मन में हरि है, एक भजन है ना, वो घोंघा क्यों नहीं तरता जिसका घर पानी में है, वो डेली नहाता है, वो डेली नहाने से भी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहाना छोड़ देना है, ये भाव नहीं है। ये थोड़ा ऊंचा लेवल है कि खाली नहा देने से फिर उसके बाद करना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसे अनेक अनेक चीजें हैं जिसको समझना है। तो श्री मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार करना, छाती पीटना, रोना, हाय क्या हो गया, मैं तो इतने दिन से मंदिर आ रही थी, ऐसे मारना भगवान के आगे। कितनी औरतें मारती हैं ऐसे जोर जोर से छाती में, और इतनी तेजी से, एक दफे तो एक औरत आई इतनी तेजी से चित्कार करने लगी, सबका वहां क्लास सुनना वो हो गया था बिल्कुल, बड़ी तेजी से रोने लगी। तो हमने कहा आप जो है रो रहे हैं लेकिन भगवान के लिए रो, दरअसल आप भगवान के लिए थोड़ी रो रही हैं, आप तो अपने दुखों को कष्टों से रो रही हैं, ठीक है कि नहीं। भगवान के लिए आंसू निकालना कि हे कृष्ण इतने दिनों बाद आप मिले, आपकी कृपा हो पाई, मैं मंदिर आ पाई, वो आंसू निकले अच्छा है, पीट पीट करके चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा कुछ, ये अपराध है। श्री मूर्ति के आगे प्रसाद खाना, अगर प्रसाद भी मिल रहा है तो उसको रख लो, अब भगवान के आगे हम चबर चबर करें अच्छा नहीं ना, थूक छिट जाते हैं। श्री मूर्ति के आगे पैर फैलाना, ऐसे करके लंबा पैर रख के बैठना, पैर उधर को करना, या कभी कभी तो कुछ भक्त ऐसे टेक लगा लेते हैं बढ़िया से तो ये अपराध है वैसे, मतलब क्योंकि भगवान के आगे हमें अलर्ट रहना चाहिए। श्री मूर्ति के आगे चर्म धारण करना, चर्म मतलब चमड़ा, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का बटुआ, चमड़े का एवरीथिंग, कोई भी चीज हो चमड़ा हम नहीं लाएं, क्योंकि चमड़ा अपवित्र चीज है, ठीक है। और केवल वही नहीं, घर में भी ना पहने, भगवान ने और चीजों की कमी नहीं कर रखी, एक से एक सुंदर सुंदर चीजें हैं। आगे श्री मूर्ति के आगे भिक्षु को दान देना, भिखारी को भगवान के आगे दान दे रहे हैं, मैंने दिया मतलब, ठीक है कि नहीं, भगवान के आगे भिक्षु को उसके आगे दान नहीं देना जब बाहर जाके। श्री मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन कहना, श्री मूर्ति के आगे किसी को डांटना, श्री मूर्ति के आगे बात करना, श्री मूर्ति के आगे झूठ बोलना, ठीक है कि नहीं। झूठ हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें झूठ कम नहीं बोलना है, मतलब पहला तो ये है सिद्धांत, ये है कि हमें झूठ हम कितने दफे माला के लिए झूठ बोल देते हैं, दूसरी चीज के लिए वो जैसे फल मिला, नहीं नहीं मेरे को थोड़ी, मैं तो मैं ही लाई थी, अरे कोई मांग रहा है तो बोलो भाई अपना भी आपको भी मिल जाएगा, नहीं देने की इच्छा तो बोल दो साहब, तो हम झूठ पे झूठ बोल देते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटना, भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद करना, दंडवत प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी उठ गए या फिर इतनी जोर से नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रसादाय, ऐसे भी भक्त हैं कितने जो डिस्टर्ब कर देते हैं पूरा, मैंने किसको दिखाना है बताओ इतनी जोर से, तेरी वैसे आवाज नहीं निकलेगी, हरे हरे नाम बोल बोलेंगे तो नहीं निकलेगी भी। ऐसे भी है। तो श्री मूर्ति के सम्मुख उकड़ुआ बैठना, उकड़ करके, उकड़ुआ समझते हैं, उकड़ुआ का मतलब है क्या बोलते, पैर पीछे को और ऐसे ऐसे करके होता है ना एकदम, हाँ हाँ जी हाँ वज्रासन में, लेकिन अगर बैठना ही है तो थोड़ी देर बैठो उसके पैर ढके होने चाहिए, पता चला वो मूर्ति की तरफ पैर कर रखे हैं एकदम, ऐसे नहीं होना चाहिए, अलर्ट रहना। श्री मूर्ति के सम्मुख उकड़वा बैठना, श्री मूर्ति के निकट कोई अपशब्द कहना, श्री मूर्ति के सानिध्य में किसी अंत की स्तुति करना, श्री मूर्ति के निकट अधो वायु छोड़ना, वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद करना, वैभव के अनुसार मतलब अगर आपके पास में पैसा है धन है और फिर भी आप भगवान को गरीबी की तरह खिलाओ या गरीबी की तरह ड्रेस पहनाओ
ये अच्छा नहीं है, तब भगवान को खूब रिच अच्छा पहनाना चाहिए। हाँ नहीं है अलग बात है, उतने में ही फिर गुजारा करना चाहिए, ठीक है, और मन में भाव रखना चाहिए प्रभु जब आप देंगे तो आपका सेवा। हाँ अंत में अंत की स्तुति करना, मतलब मूर्ति के सानिध्य में, मूर्ति के सानिध्य में किसी किसी दूसरे की, मतलब अंत की दूसरे व्यक्ति की स्तुति करना, ये है उसमें। और वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद करना। अगर आपके पास धन हो आपको सीजनल फ्रूट्स लाने चाहिए और अच्छी अच्छी ड्रेसें भगवान के लिए पहनानी चाहिए, और हर फंक्शन में हर फेस्टिवल में नया ड्रेस बनाना चाहिए भगवान के लिए, अपने घर में जो रखे हैं उनके भी, केवल मंदिर में नहीं, मंदिर में तो बनी रही है, और अपनी तरफ से भी भाव रखना चाहिए कि जन्माष्टमी में कभी भी एक बार ठाकुर राधा पार्षदी के लिए हम ड्रेस देंगे, ठीक है कि नहीं। इसलिए जितने दूल्हे और दुल्हनियां हैं, जितने लड़के और लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, भैया एक चीज तो जरूर कर लेना, जब शादी होगी अपना बजट जरा 20-30 हजार रुपए उसमें ऐड कर देना ठाकुर जी की ड्रेस के लिए, सही में, कि हम ये आप दो रसीद कटाओ ताकि आपकी तरफ से भी ठाकुर जी को ड्रेस। अपने लिए कितने ड्रेस लेते बताओ, 10-10 हजार की साड़ी, 15-15 हजार, 20-20 हजार की, है कि नहीं बढ़िया। तो एक जो है ठाकुर जी के लिए उसमें ऐड कर लो आप, कि इतना जो है हमने ठाकुर जी को देना है, बस इतना वो भी पहने। और श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी पाना, भगवान को भोग लगाए बिना पाना, ये भी अपराध है। ऋतु के फल और अन्न को श्री कृष्ण को निवेदन न करना। ऋतु के फल होते हैं ना, जैसे सीजनल फल आ गए और हम ढूंढे बिल्कुल बेसीजन वाला चीज उसको ले जा रहे, तो सीजनल वाले लेके जाए। और भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को खिलाना, और या इतनी जल्दी भोग लगाना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन डेली ही नियम बनाने की फट से रखा फट से वापस दे दिया, जैसे संसारिक मंदिरों में करते हैं, ऐसे रखा और ऐसे आपको वापस दे देते हैं, तो भोग नहीं हुआ वैसे। अब वो बोलेंगे इतनी भीड़ लगती क्या करें, तो भैया क्या करें, कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति का, एक आप चीज रखो सारी चीजों को ले लो, ठीक है कि नहीं, एक साथ ही ले लो, उसको बढ़िया से भोग लगाओ, भोग लगा के उसको एक जगह रख के वहां से बांटो आप, जरूरी नहीं उसी की थैली वापस देनी आपको। और मंदिर में आजकल ये सिस्टम ठीक नहीं है कि आदमी मिठाई का डब्बा ला रहा है तो मिठाई का डब्बा भगवान का है, वो कुछ भोग लगा के जरा वापस देना, उन्हें सारा डब्बा वापस चाहिए, वाह। अगर वापस डब्बे चाहिए तो दो डब्बे लाइए, एक वापस देंगे, वो जो ला रहे हो भगवान का होना चाहिए, ये क्या सिस्टम हुआ बताओ, सारे फल लाए बोले फल वापस दे दो, अब जी वापस की भाव नहीं रखना चाहिए लाए को, तो मिल गया प्रसाद तो ठीक है, ना मिला तो कोई चिंता, दर्शन ही प्रसाद है भाई, ये भाव होना चाहिए हमारा। और आगे क्या बोलते हैं, श्री मूर्ति की ओर पीठ करके बैठना, श्री गुरु को प्रणाम करते समय, हाँ श्री मूर्ति की ओर पीठ करके, इसलिए हम लोग पीठ भी नहीं करते हैं जब ठाकुर जी का, हम एंगल ऐसे चेंज करके बैठते हैं, भागवत क्लास भी सुनते हैं ना ऐसे करके, मूर्ति वहां है, वैसे तो सर्वत्र भगवान है लेकिन जहां पर प्रत्यक्ष है वो साक्षात, तो वहां तो हमको ध्यान देना चाहिए। आगे बोलते हैं, श्री गुरु को प्रणाम करते समय गुरु प्रणति का पाठ न करना, गुरु महाराज जी का क्या न बोलना, प्रणाम न बोलना। श्री गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ न करना, सानिध्य स्तव पाठ मतलब ठाकुर जी का गुणगान होता है, पता चला गुरुदेव गा रहे हैं और अपना मुख की तरह बैठे हैं। कभी कभी मैं आरती में देखता हूं लोगों को, बीमार हूं तब भी बोली, वो बीमार भी नहीं है फिर भी क्या करते हैं, पीछे खड़े हैं मूर्ति की तरह, जिस वक्त दर्शन हो रहा है उसी वक्त उनका जप शुरू हो रहा है, या पीछे गायत्री शुरू हो रही है। अरे भाई आरती में खड़े रहो ना, ये आधा घंटा खड़े रहने में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दुनिया में अगर वॉचमैन बनोगे तो इनकी, अगर पुलिस बन गए इनकी ट्रैफिक में, तो आपको पूरे दिन भर खड़े रहोगे 20,000 के लिए वहां पर, और भगवान की आरती में आधा घंटा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है कि नहीं। खड़ा रहना चाहिए आरती में, भाग लेना चाहिए, बल्कि वो एकदम गूंगे की तरह न रह के मुंह से बोलो, पैर चलाओ, और जो जो कीर्तन कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाओ, करताल बजाओ, है कि नहीं, नाचो। वो देखो कौन कीर्तन कर रहे हैं, कौन कीर्तन कर रहा है, किसके लिए कीर्तन कर रहा है नहीं देखेंगे, कौन कीर्तन कर रहा है, वाह। ये सब अपराध हैं भगवान के प्रति किए हुए अपराध, और इनसे भक्ति में क्या होता, हमारी क्या होती है, भक्ति रुक जाती है, वहीं पर रुक जाती, भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। और गुरु के आगे आत्म प्रशंसा करना, गुरु के आगे अपनी प्रशंसा, गुरुदेव आपको क्या पता है मैंने कितनी मेहनत करी,
आपको पता नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उनको डायरेक्शन करना जैसे कि उनको पता ही नहीं है। तो श्री मूर्ति के समक्ष देव निंदा करना, जैसे प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे वो सब चिल्लाए एक दफे, एक व्यक्ति आया बोले कि मुझे भी दीक्षा चाहिए, उसकी दाढ़ी थी पूरी, और समझ लो कि सेकंड टाइम आया हुआ, एक दफे पता नहीं कहीं हरिनाम में आया था एक दफे वैसे वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो बोलता है मुझे भी दीक्षा लेनी, दीक्षा का उस दिन दीक्षा का दिन था, मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हु आर यू, बोलते हैं आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, बोले हु इज गॉड, बोले कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बोले ठीक है टेक इनिशिएशन, तुम दीक्षा ले सकते हो बैठो। इतनी बात बोली सारे शिष्य भड़क गए, बोले सुना प्रभुपाद आपने हमको 1.5 साल इंतजार कराया, हम सबके लिए तो बड़े नियम बने थे, इसको इतनी जल्दी कैसे दे दिया, ये कैसे हो गया। प्रभुपाद जो है इतना गुस्सा हुए, बोले रास्कल तुमको मैंने योग्य बनाया, अब तुम्हारी औकात दिखानी जरूरी है, तुमको कहां से कहां ला करके मैंने तुमको दीक्षा दी, अब तुम मुझे यानी कि गाइड करोगे कि किसको दीक्षा देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, क्या मुझे इतना पता नहीं है, मेरे को जितना पूछना था बस हो गया, वो योग्यता है उसकी। प्रभुपाद देख रहे हैं उसके दूरदृष्टा होते हैं भगवान के भक्त, वो समझ जाते हैं, और वो बहुत बड़े भक्त बने, उनका नाम कुछ वो नाम याद नहीं आ रहा है, नाम है अभी भी है, कितने बड़े भक्त बने फिर वो। तो प्रभुपाद जी को पता है कि वो कैसा भक्त है, प्रभुपाद तो पिछले जन्म की बात भी बता देंगे, प्रभुपाद जी के अंदर सारी सिद्धियां हैं उनके अंदर अष्ट सिद्धि, लेकिन वो दिखा नहीं रहे लोगों को। प्रभुपाद जैसे अपनी ओर आकर्षित करना, प्रभुपाद सब उनसे आकर्षित रहते थे, अपने शिष्यों को जहां लगाते थे वहां चले जाते थे, सारी सिद्धियां थी उनके पास, लेकिन सबको कृष्ण की खुशी के लिए लगाया उन्होंने। तो गुरु के आगे जो है उनको गाइड करना, उनको यह करना ये अच्छा नहीं है। श्री मूर्ति के समक्ष देव निंदा करना, समय से ठाकुर जी को शयन न देना और समय से भोग न लगाना, ये सब समय का मतलब कभी कभार आपको हो सकता है कभी कभार, लेकिन हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हम नहीं लगा पा रहे हैं तो दूसरा लगा ले, और उसको थोड़ा सा प्रेम से बताएं हम कि भाई इतने बजे ठाकुर जी को भोग लगता है, कोशिश करो जल्दी बना लो, है नहीं। तो ये इसका मतलब है भक्ति में गंभीर हो, सीरियस हो, छोटी छोटी चीज के प्रति जब सीरियस होंगे तब आप बड़ी चीज के प्रति भी क्या बनोगे, गंभीर बनोगे, ठीक है कि नहीं। तो दूसरे शास्त्रों के अनुसार सेवा अपराधों का भेद वर्णन, हे प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार अन्यत्र कहे गए सेवा अपराधों के विषय में संक्षेप में वर्णन करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों का आस्वादन करना, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन अपना खाना, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब भगवान के लिए बोलो व्यंजन चढ़ाओ तो बोलेंगे सौंफ और मिश्री रख रखी है, ठीक है कि नहीं। या लोग बोलेंगे स्वामी जी इतना पैसा है ही नहीं, हमारे तो बड़े गरीब हैं, भगवान के लिए देने की बात आएगी तो, और अपना तो बढ़िया बढ़िया बनेगा। कभी कभी लोग ये भी भावना रहती है अपना खाने के लिए, अपना जो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, लेकिन उसमें भगवान वाली भावना नहीं रहती कि भगवान को खिलाना है मुझे आज। और ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं कि आज क्या बनाना है, समझ रहे हैं, क्योंकि उनका भगवान से इतना प्रेम हो चुका है, वो भगवान से बोलते हैं हे प्रभु मुझे तो पता नहीं आपको कैसे खिला पाऊं, आप ही मुझे प्रेरणा दीजिए। तो मन में आती है आज मुझे जो है अरवी प्रसादम चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, तो वो तब भगवान रुचि रुचि प्रेम पूर्वक पाते हैं। आपने देखा होगा कितने घरों में आप जैसे किसी घर में पाते हो प्रसाद, ना प्रसाद वही है लेकिन उसमें इतना आनंद आता है, जबकि ज्यादा आइटम भी नहीं है, लेकिन कहीं प्रसाद आप पाते हैं तो वहां भगवान ने रुचिपूर्वक नहीं लिया है, मतलब बहुत अलग ढंग से बना है नहीं, तो अंतर आ जाता है। प्रभुपाद जब भोग लगाते थे क्यों इतनी जल्दी प्रभुपाद ने सबको भक्त बना दिया, प्रभुपाद तो भगवान को खिलाते हैं सीधा सीधा, है नहीं, ऐसा उनका भाव है भगवान के प्रति। तो अंधकार में भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना, बिना लाइट जलाए बिना अंधकार में स्पर्श करना, शमशान से अपवित्र अवस्था में आकर हरि के समीप जाना, बिना वाद्य एवं संकेत दिए पट खोल के मंदिर में प्रवेश करना, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो खटखट करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप यही सोच रहे हो कि खाली मूर्ति है, आपको अनुभव नहीं, आप पुजारी तो हो लेकिन अनुभव नहीं है आपको कि भगवान है साक्षात। किसी को भी, किसी के भी कमरे में, एक साधारण व्यक्ति के भी कमरे में कहीं जाते हैं ना हम लोग, मैं आ जाऊं अंदर, जो ऐसा बोलता है इसका मतलब वो सभ्य व्यक्ति है, और जो ऐसे धड़ मैदानी घुस के आ जाता है ऐसे भाई, वो सभ्य व्यक्ति जेंटल पर्सन नहीं है वो, ये होना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अच्छी बात है। तो इसी प्रकार भगवान के अंदर भी अर्चन समय में बिना किसी कारण के बोलना, अर्चना कर रहे हैं उस वक्त बोलना नहीं होता क्योंकि थूक के छींटे नीचे आते हैं। तो आप उस वक्त कथा सुनो, चाहे गुरुदेव का प्रवचन सुनो, कोई वैष्णव भजन सुनो, हल्के सुनो। जैसे मैं देखता हूँ पुजारी जी राधा गोविंद महाराज जी का प्रवचन सुनते रहते हैं और वर्शिप करते रहते हैं उनके एक्सेस से अंदर हल्की आवाज में, ये आप सुन सकते हो पूजा करते वक्त भी। प्रवचन लगा दो, जब आप डीटी वर्शिप करते हो प्रवचन लगा के सुनते रहो और उनका वो करो, है नहीं? तो मन ध्यान पूरा उनके गुणानुवाद और उनमें लगे रहेगा। तो इस प्रकार से अर्चन के समय में बिना किसी कारण के बोलना, अस्वादिष्ट वस्तु को भगवान को समर्पित करना, जो स्वाद विहीन है, जो चीजें जिनमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, मतलब चलो ठीक है भोग लगाना है करके वो ले आए। इसीलिए जिन फूलों में सुगंध नहीं होती है वो कृष्ण को हम नहीं चढ़ाते हैं। इसका भाव क्या है कि जिनमें सुगंध नहीं है वो नहीं चढ़ सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि कृष्ण को हम बेस्ट से बेस्ट दें। जैसे आप अपने प्रेमी को, अपने प्रिय व्यक्ति को क्या करते हो, गुरुदेव के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज लाना सोचते हो ना, तो कृष्ण के लिए भी बेस्ट से बेस्ट चीज लानी चाहिए। सबसे बढ़िया टमाटर छांट के लाओ, लाल लाल सुरख एकदम, सबसे बढ़िया सेव, ठीक है कि नहीं? पनीर एकदम ताजा है कि नहीं? नहीं है तो तीन दुकान घूमो, जैसे अपना खाने के लिए घूमते, नहीं मुझे ताजा चाहिए, कल का बासी नहीं, एकदम टाइट क्यों हो रहा है, एकदम बढ़िया होना चाहिए। ये सब भावना है। पूजा के समय बाहर जाना, माला दिए बिना ही भगवान की पूजा करना, सुगंध रहित फूलों के द्वारा कृष्ण की पूजा करना, स्नान नहीं करके पूजा करना, स्त्री भोग करने के बाद बिना स्नान किए पूजा करना, शव को छू के क्रोध करके भगवान की सेवा करना, तांबूल चबाते हुए प्रभु के समीप जाना, मतलब पान चबाते हुए, पान खा रहे हैं और लाल लगा हुआ पूरा पूरा, बहुत अच्छा डिटेल, पान खा रहे हैं। ठाकुर जी को सुलाते समय बाएं हाथ से स्पर्श करना, सुलाते समय ना उनको जब हम करते हैं तो ऐसे ऐसे करके सुलाते हैं, ऐसे करके, तो कुछ कुछ चीज जो है डिनाई हो जाती है। ये अगर मान लिया सुलात, हाथ तो लगेगा ही दोनों हाथ, है कि नहीं? तो वो उतना बड़ा नहीं माना जाता है, ठीक है कि नहीं? और पूजा काल में गर्व भरी बात बोलना और चरणों को बिना धोए मंदिर में प्रवेश करना, अवैष्णव के द्वारा दिया हुआ द्रव्य निवेदन करना, अवैष्णव को दिखा के पूजा करना, नख से स्पर्श किए हुए जल द्वारा पूजा करना, नाखून से, पसीने द्वारा मिले हुए जल से पूजा करना, कृष्ण की थपत कसम लेना, बाय गॉड भगवान की कसम खा के मैं कह रहा हूं, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। जो बाय गॉड बोलता है वो भगवान को सस्ता बना देता है, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए बाय गॉड, गलत बात है। प्रसाद का उल्लंघन करना, इन सभी कार्यों को करने में अपराध होता है, ऐसा करने से सेवा करने वाले वाले की भक्ति में बाधा पहुंचती है। सेवक को सेवा अपराध का त्याग करना चाहिए। श्री मूर्ति के संबंध में जिनका भजन और पूजन है उनको सेवा अपराधों का परित्याग करना चाहिए। वैष्णव सदा ही नाम अपराध एवं सेवा अपराध का परित्याग करके श्री कृष्ण सेवा का आस्वादन करते हैं। आप डीटी की सेवा कर रहे हो तो नाक में खुजली लगी, ठीक है जी, तो आप थोड़ा सा हटके नाक को खुजला करके उसको भी धो लो, फिर वहां पर आना है, हाथ को धोना है, ये नहीं कि ऐसे ही उसको करके और फिर वहां डीटी में वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, या ऐसे करके, ठीक है कि नहीं? हाँ कहीं पर होता है, लेकिन आपको अगर तकलीफ है तो थोड़ा उसको सब साफ करके, बढ़िया से हाथ सब साफ करके फिर वहां आना चाहिए। फ्रेश कपड़े होने चाहिए, आप गोदी में भी रखते हो तो साफ कपड़े होते हैं भगवान को, और गोदी में रखने से पहले क्या होता है, उनका टावल रखा जाता है, टावल के ऊपर ठाकुर जी होते हैं, ऐसे करके फिर फ्रेश, बिल्कुल नाखून नहीं होने चाहिए बड़े, तब आप ठाकुर जी को बढ़िया सा सजाओ, उनको ड्रेस पहनाओ, उनको, क्योंकि जब कपड़े खोलते हैं तो उसके बाद उनकी तेल से मालिश भी होती है, मालिश भी करें उनका सा, ठाकुर जी को मालिश करके, ये भाव है। आप देखना उस दिन ठाकुर जी कितने सुंदर लगेंगे, जिस दिन आप बढ़िया से सेवा किए रहोगे, ऐसा लगेगा जैसे लड्डू साक्षात घर में बैठे हैं, देख रहे हैं, अब ये ला अब ये ला, बातें करते हैं भगवान। आपको बताया था ना एक माई, क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल जी को साक्षात उनको सेवा करते करते लड्डू गोपाल जी लाइव हो गए थे बिल्कुल, और वो माई उनको छोड़ के चली गई, एक जगह कहीं गई थी, तो वहां उनको आवाज आई रोने की कि मुझे सुलाएगी नहीं, मैं कब तक वेट करूंगा, तो भागती और सब उसको छोड़ करके वहां आई और लड्डू गोपाल जी तब तक बाहर फुदुक के खेल रहे थे, उनको ऊपर उठाया और उठा करके उनको सुनाया। तब वो फिर सपने में बोलते हैं हाँ मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और एक दफे तो लड्डू गोपाल बोलते हैं कि वहां से उछल करके उनके यहाँ बगल में आ गए, जैसे बच्चा होता है ना, क्योंकि वो बाल रूप में सेवा करती थी। और बोलते हैं माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बताओ तो भगवान जो है पूर्ण है, वो आपकी भावना के हिसाब से आपको आनंद देते हैं। जब आप कृष्ण के लिए मरोगे तो कृष्ण आपके लिए मर मिटेंगे, यही तो भाव है। जिसके लिए आप मरते हो वो आपके लिए मरने का कोशिश करता है संसार में, सीधी सी बात है। ये तो ये थामाम प्रबद्धन्ते ताम्स तथा भजामि हम। तो कृष्ण के लिए अगर आप मरने का भाव होगा ऐसा, तो कृष्ण भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, आपके लिए बेबी बन जाएंगे। लो मैं बच्चा, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं, समझ रहे हैं। इतना आनंद दे देंगे आपको ठाकुर जी, ऐसे हैं सरल। तो सेवा अपराधों से सेवक पुजारी को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, परंतु नाम अपराध को त्यागना सभी वैष्णवों के लिए सभी समय अति आवश्यक है। सेवा अपराध करने पता है क्या होता है, अगर आप नाम बढ़िया कर लोगे, कोई सेवा अपराध हो गया तो अच्छे ढंग से नाम जप लोगे तो सेवा अपराध माफ हो जाते हैं, लेकिन नाम अपराध जो है माफ नहीं होते हैं। नाम अपराध और फिर साथ में वैष्णव अपराध तो बिल्कुल ही माफ नहीं होते हैं, बिल्कुल वैष्णव अपराध किए हुए वो तो जब तक वैष्णव माफ नहीं करेगा तब तक कृष्ण वो आपके पेंडिंग पड़े हुए, मतलब बैंक बैलेंस चल रहा है। तो अपराध क्या होते हैं वैष्णवों के प्रति, वो देखिए बता रखा है पतन के छह कारण। स्कंद पुराण से श्लोक है, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम पतन्ति पितृभिः सार्धम महारौरवम संगीते हन्ति नन्दति वे द्वेष्टि वैष्णवान अभिनन्दति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत। जो मूर्ख व्यक्ति महात्मा वैष्णवों की निंदा करते हैं वे अपने पितृवर्ग सहित कुल सहित महारौरव नामक नरक में जाते हैं। जो वैष्णवों की हिंसा करते हैं, ठीक है, ये पहला है वैष्णवों की जो हिंसा करते हैं, हंती निंदति, और जो निंदा करते हैं। निंदा का मतलब क्या है, निंदा का मतलब है वैष्णव बढ़िया ढंग से प्रवचन दे रहा है और हम उसको खोट निकाले, ठीक है नहीं। वैष्णव जो है क्या करें, वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, हम उसको नीचे गिराने की कोशिश करें। मान लिया चार लोग तारीफ करें तो हम बोले नहीं नहीं ऐसा तो है लेकिन ऐसा है, ये कहने की जरूरत नहीं। अगर वो तारीफ करें तो बहुत अच्छी बात है, निसंदेह ऐसे है, क्योंकि दोष किस्म नहीं बताए संसार में। लेकिन उस दोष को पकड़ करके हम ना बैठ जाए, मतलब कि पकड़ करके बैठ गए, पकड़ना है भक्ति पकड़नी है, केवल दोषी नहीं पकड़ना है, दोष होंगे, ठीक है कि नहीं। हो सकता है किसी वैष्णव से आपकी नहीं भी बने लेकिन अपराध नहीं करना है, आप उनको क्या कर सकते, प्रणाम कर सकते, क्योंकि कभी कभी कुछ वैष्णवों का व्यवहार जो है ना हमको समझ में नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है, और मान लिया समझ में आ भी गया, मान लिया वो ईर्ष्या करके आपसे बोल रहे हैं या कुछ और करके, तो आपने वो भाव नहीं रखना है, आपने क्या करना है जस्ट उनको जब मिले उनको हरे कृष्णा भी बोलना है, इज्जत भी देनी है, बाकी आप अपना क्या करना है, अपना भजन ठीक से करते रहना है, जहां से आपको भक्ति में आगे बढ़ रहे हो वहां संग करते रहना है आपको, ये है। इसमें आपका अपराध नहीं होता है, समझ रहे नहीं, ये बात है। और कोई भी चीज कहना तो स्पष्ट कह देना है कि भाई हम अभी ये कर रहे हैं और हमारा मन है ये, इसलिए हम आप जो है बुरा नहीं मानेगा, बस करके खत्म, स्पष्ट बोल दिया, तो इसमें अपराध नहीं होता है। तो निंदा का मतलब होता है अब ढूंढ ढूंढ के अवगुण निकाल निकाल करके उनका निंदा किए जा रहे हैं, पूरा आधा घंटा बैठ करके, घंटा बैठ करके चुन चुन के उन्हीं की निंदा की जा रही है, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, कृष्ण माफ नहीं करेंगे, आपकी माला बिल्कुल रुक जाएगी। जो वैष्णवों की हिंसा करते हैं, वैष्णवों को मारते हैं, मतलब जो भगवान का नाम ले रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई अपराध करता है वैष्णव लोग ना, कोई चोरी कर देता है, कोई अवैध संबंध में पकड़ा जाता है, कोई दूसरी चीज में पकड़ा जाता है, तो उसको मारते नहीं है, बैठो गुड़िया, उसको मारते नहीं है, क्या काट देते हैं, शिखा काट देते हैं या उनको दूसरे मंदिर भेज देंगे। मारने का विधान नहीं है कि हम बिल्कुल यानी कि मारें बिल्कुल, हाँ लेकिन जो भजन नहीं करता है, कुछ बदमाशी करता है, जो कभी कभी एक्शन लेना पड़ता है फिर वहां पर, जैसे वैष्णव पर हाथ उठा दे कोई व्यक्ति, तो फिर चार वैष्णवों को उसको उठा करके बाहर करना पड़ता है, जैसे हनुमान जी ने किया ना। अब रावण जैसे लोग जो है वैष्णव पर हाथ छोड़ेंगे तो वहां वैष्णव फिर क्या करता है, उसको समझाता है ऐसी जगह पर, लेकिन भक्तों को नहीं, जो माला करते हैं, जो बदमाशी करते हैं उनको कर सकता है, बदमाशी लोगों को, जो माला करते हैं उनको पीटना जो है ये क्या है, ये अपराध है, वैष्णव अपराध। और निंदा करना दो हो गए, ठीक है, द्वेष करते हैं तीसरा, जो वैष्णव से द्वेष करते हैं, ऐसी फोकट में द्वेष कर रहे हैं उसको, अब कोई अच्छा प्रवचन दे रहा है उसी में द्वेष है उसको, कहीं मेरा पत्ता साफ ना हो जाए, फोकट का द्वेष करना है। तुम्हारा पत्ता साफ क्यों होगा बताओ, तुम्हारे अपना योग्यता है, तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हारी अपनी सत्ता है, तुम्हारे अपने कृष्ण है भाई, हर व्यक्ति के कृष्ण अपने अपने हैं, तो आप तो मालामाल हो, आप क्यों चिंता करते हो, कृष्ण जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने प्रभुपाद जी के हैं उतने आपके हैं, लेकिन आप उतना बना नहीं पा रहे उनको अपना, गलती किसका है, दोष मेरा ही है, मैं कृष्ण के नजदीक नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मैं विनम्र नहीं हूं, मेरे अपने व्यवहार आड़े आ रहे हैं, तो दूसरे को ईर्ष्या क्यों करूं मैं, ठीक है कि नहीं, बल्कि ईर्ष्या न करके ये सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ू, मैं उनके जैसा कब बन पाऊंगा, ये जिसके अंदर भाव होगा वो सीखेगा, और नहीं तो जिसके अंदर द्वेष होगा वो जो है उनकी गलतियां निकालेगा और कभी उनके पास बैठ के सीखेगा भी नहीं। नहीं तो जो योग्य व्यक्ति होता है वो तो जाता है, प्रभु जी आप ये कैसे सीखे, प्रभु जी आपको ये कैसे आया, कि नहीं फिर थैंक्स भी देना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए। तो ये संसारिक लोग तो अपना काम बनाना जानते हैं, बस काम बनाए उसके बाद तू कौन मैं कौन, सही में अपना काम हो गया फिर तू कौन मैं कौन। तो ये है तीसरा, द्वेष करना जो है, फोकट में द्वेष करना, द्वेष का मतलब यही है ईर्ष्या, हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और भक्ति के जीवन में भी जब हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं ना कि यही क्यों कर रहा है, वही छोड़ दो, जो जो कर रहा है उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं कि गलती नहीं, ये मत सोचना, गलतियां होती हैं, गलती कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या अनमनस्क भाव से रहना है, नो प्रॉब्लम, कृष्ण को छोड़ो, क्योंकि हमारे पास अधिकार भी नहीं है, ना ही मेरे पास शक्ति है, ना ही मेरे को बोल रखा है, छोड़ दो। अपना अपना क्या करना है कि मैं कैसे अपना माला ठीक कर पाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ऐसा भाव भी ना रखूं, छोड़ दो, कृष्ण अपने आप ठीक करेंगे, समय आएगा शेर को सवा शेर मिलता है, श्याणे को डेढ़ श्याणा मिलता है, चिंता क्यों करते हो, आप अपने हाथ में भाव लोगे तो आप अपराध हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो, ठीक है। ये जो है इससे क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, इसका भाव ये नहीं कि कोई गलती नहीं करता है, गलती करते हैं संसार में, कितनी गलतियां होती हैं, इसका मतलब नहीं कि लाल ड्रेस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, तिलक लगा लिया तो क्या बोलते हैं महान वैष्णव हो गए, ऐसा भी नहीं है, कितने लोग धोती कुर्ता लगाते इसलिए हैं सारे उल्टे उल्टे कर्म करने के लिए, है नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो वहां देख करके हट जाना है बस, हाँ जिसको सुधार सको उसको बोल देना है कि चोर को चोर कहना निंदा नहीं होती है, उसको बताना है कि देखो भाई आप चोरी कर रहे हो, आगे आपको डंडा पड़ने वाला है पुलिस का, उसको बता देना बस, फिर भी ना माने छोड़ दो, जब कृष्ण की नहीं सुन रहा है तो हमें क्या है सर, जो हमारी सुनेगा, समझ सकते हैं हमारी क्या सुनेगा बताइए। तो आगे जो है ये द्वेष करते हैं, वैष्णव के दर्शन प्रणाम, दर्शन कर प्रणाम नहीं करते हैं, ये चौथा है, वैष्णव के दर्शन करके प्रणाम नहीं करते, जैसा कि बता रखा है ये क्या बोलते हैं उपदेशामृत में कि जो लोग हरिनाम जप रहे हैं उनको मन से आदर दो, जो हरिनाम जप रहा है, अभी दीक्षा नहीं ली है लेकिन हरिनाम जप रहा है उसको मन से हमें आदर देना चाहिए, देखो आहा, बल्कि उसको ये आभासी ना हो तो नया भक्त है, नया भक्त है, उसको बोलना चाहिए आप कितने अच्छे हो, देखो कहाँ से आते हो, बहुत अच्छा, मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बोलना है, उसको आगे प्रमोट करो, मन से आदर दो। और जिन्होंने दीक्षा ले ली है, ठीक है कि नहीं, जब आपस में मिलते हैं तो हम क्या करते हैं उनको, फिर क्या करते हैं, खाली हरे कृष्णा नहीं, प्रणाम, दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भस्तम, ये एक को नहीं कि पर्टिकुलर छांट छांट करके फिर प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। अब रहा सवाल लेडीज और जेंट्स का, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ अभी उतने उन्नत नहीं है हम, वो बोलते हैं हमारा लेडीज शरीर है, हमारा जेंट्स शरीर है, अब जैसे ब्रह्मचारी लोग हैं, अब कोई ब्रह्मचारी नहीं देख रहा है आपको, हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, आप नहीं कोई वो नहीं, अपना हरे कृष्णा कह दो बस, हो गया, ये लेडीजों के लिए, ठीक है कि नहीं। और हाँ अगर आपको देखे हरे कृष्णा कहे तो फिर प्रणाम कर देना चाहिए, ठीक है कि नहीं,
और अगर नहीं देख रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप भी हरे कृष्णा करके निकल जाओ। इसमें आपको कोई भी अनर्थ क्या होगा आपका नहीं होगा, कि जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर पता चला कि 200 ब्रह्मचारी मिल गए तो सबको एक एक को प्रणाम करना लेडीज को, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं, वो हरे कृष्णा कह करके उनको आगे निकल सकते हैं बस। और कोई नहीं कह रहा है, देख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसमें अपराध नहीं है, ये पर्टिकुलर बात है। और वैसे बता रखा है जब हम अपने कमरे में हों, जैसे हमारे भक्त लोग अपने कमरे में होते हैं या आप लोग अपने कमरे में, आपको पता है आपके पिताजी भी नाम जप करते हैं, माताजी भी नाम जप करती है, भाई भी नाम जप करता है, तो एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए अपने कमरे में जब उठते हैं हम। जैसे हम लोग उठते हैं चार वैष्णव, वो नया भक्त है, नया भक्त दोनों, तो नया की कोई चिंता नहीं, दोनों एक दूसरे को आपस में प्रणाम करो हरे कृष्णा। ठीक है कि नहीं। और जो आपसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब उम्र में बड़े हैं, आपसे दीक्षा पहले लिए हैं, मंदिर में पहले आए हैं, उनको हमने खुद हरे कृष्णा बोलना चाहिए देखते हुए। कभी लोग हरे कृष्णा तो कहते लेकिन देखते नहीं है, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है कि नहीं। यही ऐसे ऐसे उस वक्त कह सकते हैं जब आपको, जैसे आप कहीं पर हो, मान लिया हाथ नहीं जोड़ सकते हो तो, लेकिन जहां पर हाथ जोड़ सकते हो हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा बोलना चाहिए मुंह को देखते हुए। मैं देखता हूँ कभी भी लोग खाना पूर्ति प्रणाम करते हैं चले जाते हैं, किसको प्रणाम किया भाई, देखो तो सही थोड़ा, हरे कृष्णा नहीं, वो एक जो रूटीन बना लिया, प्रणाम किया भागे देखा भी नहीं, मतलब किसको प्रणाम किया नहीं किया है, खाना पूर्ति, ये भी ठीक, ये भी अपराध होता है। देख करके वैष्णव को हरे कृष्णा कह करके उनसे याचना करनी चाहिए। और आपस में ही अपने रूम में, जैसे आप मान लिया दो बहनें हैं, तो छोटी बहन को अपने आप बड़ी बहन को प्रणाम कर लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं कर रही है, तो बड़ी बहन को बताना चाहिए, देखो हमने चलो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। देखो ये आपस के हुए हैं सिस्टम, इससे क्या हो जाएगा, रिगार्ड बढ़ जाएगा उनका आपस में, प्रेम बढ़ जाएगा अपने ही कमरे में। फिर बाहर जब आते हैं हम लोग, जैसे मंगल आरती में जब वैष्णव लोग देखते हैं तो हम वैसे कर लेते हैं, नहीं तो और फिर ऊपर जब वांछा कल्प वैसे होने के बाद फिर और वैसे कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं ये बात। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु लोग हमको प्रणाम ही करेंगे, आपके वरिष्ठ लोग अगर आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही कह रहे ठीक है हरे कृष्णा, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। और आपको ये आशा नहीं करनी चाहिए इन्होंने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, कोई करते हैं तो बहुत बेस्ट है, वो नहीं करते हैं उनकी मर्जी। ठीक है, ये भाव है। बस आगे है, वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करते हैं जो लोग, वैष्णव के प्रति बड़ा एकदम क्रोध करके, ठीक है कि उनका हानि के लिए क्रोध करके जो है जो प्रकाश करते हैं, ये भी वैष्णव जो है क्या है, निंदाई है, वैष्णव अपराध है। और छठा है, वैष्णव के दर्शन से आनंदित नहीं होते हैं। जब वैष्णव का दर्शन करते हैं तो कोई हर्ष नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो वैष्णव को देख करके हर्ष हमारे मन में होना चाहिए, नहीं है अगर ना तो कुछ ना कुछ अड़गड़ है। और ये सबके लिए लागू है, ये याद रखना, जिनको आप पसंद नहीं भी करते हो, आपको किसी भी उनके व्यवहार से दुख लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको उनको देख करके ये हर्ष, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए ये कृष्ण का अंश है कि नहीं। और देखो भक्ति में लगे हैं, आपका व्यवहार अड़े आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर्ष होना चाहिए, आपको मतलब एकदम उसको देखकर दुखी नहीं हो जाना चाहिए, और ये अपराध हो जाएगा फिर, ये जरूरी समझना है। आपका किसी ने सारा नुकसान भी कर दिया हो दुनिया भर का भी, तब भी आप उसके प्रति क्या बोलते हैं, ऐसा क्रूर भाव नहीं रखना, तो ये बहुत ऊंची बात हो जाएगी, अमानी ना अमानी देना कीर्तन सदा है। तो ये अपराध अगर हम करेंगे ना, तो जब तक वैष्णव माफ नहीं करेंगे तब तक हमें माफी, और जब तक माफी नहीं मिलेगी तब तक हमारा हरिनाम ऐसे ही होगा, उसका फल नहीं मिलेगा, वो जीरो जाएगा। वैष्णव अपराध ही हरिनाम के बैंक बैलेंस को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है बोलो प्रभु, जीरो, पूरे खाते को कम नहीं जीरो कर सकता है, जितना आपने नाम जप रखा है वो जीरो हो जाएगा। ये छह प्रकार के अपराध हैं, जितना नाम जप रखा है, बाकी कोई माई का लाल नहीं है कि भगवान का जो आपने नाम बोल रखा है उसको काट सके, केवल वैष्णव अपराध से जीरो होता है, बाकी भगवान के नाम को कोई जीरो नहीं कर सकता है जैसे भी लिया है। ठीक है प्रभु जी, तो यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगली दफे जो है और भी आगे बता रखा, भजन प्रणाली क्या है, इसमें रस तत्व क्या है, भाव तत्व क्या है, सिद्ध प्रणाली क्या है, तो बड़े अच्छे अच्छे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि वास्तव में भक्तों को कैसे भगवान का सब नाम गुण रूप लीला वैशिष्ट सब अपने आप गुरु के यस्य देवे पराभक्ति, जिनको गुरु में और कृष्ण में परम वो होता है विश्वास,
उनके हृदय में भगवान स्वाभाविक प्रकट कर देते हैं, उसको जरूरी नहीं कि अलग से कहीं ऐसे स्थान में जाने की। जी
भगवान का महाप्रसाद है
जी, कहाँ का कहाँ से लाए हैं
ये जो भगवान का ड्रेस बना था ड्राई
फ्रूट। अरे वाह वाह, देखा क्या बात, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। ये ले लो प्रभु, और या तो बैठे बैठे ही दे दो सबको, थोड़ा थोड़ा पहले तोड़ लो इधर, है ना, तोड़ लीजिए ऐसे करके, मिल जाएंगे सबको। इतने कितने हैं देखो, काजू को तोड़ लो, आप तोड़ लो ना काजू को, दो दो पीस कर लो, आप भी तोड़ लो, मदद करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों के, एनी क्वेश्चन? जी प्रभु जी,
जी बहुत कम क्लास होते
हैं जो क्लास देते हैं, बहुत कम क्लास सुनते हैं। जी हाँ,
ऐसा क्यों?
गलत बात है फिर,
जो क्लास नहीं ले जाता है अभी सोचता है मैं तो सुनना ही नहीं, मैं तो बस हो गया।
ऐसा ऐसा कौन करता है? थोड़ा सा
बहुत देखे मैंने,
बहुत देखे हैं, लेकिन लेकिन अगर आप सुनो, अगर आप क्या बोलते हैं ये जैसे श्रीमद् भागवत क्लास में देखोगे तो कौन कौन सुनते नहीं सुनते पता चल जाएगा। हाँ, जो उसमें है तो अगर वो ऐसे है तो गलत जा रहे हैं, फिर ठीक नहीं जा रहे हो, चाहे कोई हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो। सन्यासी के लिए भी प्रभुपाद जी ने क्या लिख रखा पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं शाम को भी भगवद गीता क्लास सुने, अगर ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे भागवत क्लास तो सुने ही। 30 दिन में, जैसे आप मान लिया कहीं बाहर रथ यात्रा में गए हो, हम नहीं आ पाए, ठीक है, जैसे हम लोग सहारनपुर गए थे रथ यात्रा में, हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहते दिन रात, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ हो तो आपको भागवत क्लास सुननी चाहिए आकर के बैठ करके, जो भी क्लास दे रहा हो। इसलिए मैंने कभी भी आपको, आपने देखा होगा क्लास सुनाने, मैंने कभी किसी को मना किया ही नहीं कि आप यहाँ मत जाना वहां मत जाना। जो ऐसा कहता है यहाँ मत जाना वहां मत जाना, ये भी क्या है? एक अपराध है। जब अंदर आ गए सारे वैष्णव, वही गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो फिर क्या डिफॉल्टिंग आ गई इसमें, वहां मत जाना यहां मत जाना, ठीक है कि नहीं? हाँ, एक स्थिति विशेष देख करके, जैसे पता चला 7 के 7 दिन अब कोई घर में रहता है और 7 के 7 दिन भाग रहा है और 7 क्लासों में, अब पता चला उसके घर में इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो गाइड के लिए कहना पड़ता है उसकी स्थिति देख करके कि अभी आप इतना ना जा करके आप ये करो उस मंदिर में आप अटेंड करो। तो सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मंदिर में आए, जरूर क्लास सुने। हम लोग ये इसलिए कहते हैं कि सवेरे श्रृंगार दर्शन में आओ, मंगल आरती में आओ, भागवत क्लास सुनो, जो भी दे रहे हो, अंग्रेज भक्त ही क्यों ना दे रहे हो, उनकी प्रेरणा तो देखिए अंग्रेज में आकर के हो, है कि नहीं, अंग्रेज होकर के यहाँ क्लास दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ जो भी मतलब कोई भी वक्ता हो, अगर उसके मन में ये भाव है कि अब मैं क्लास नहीं सुनूंगा, तो निसंदेह गिरेगा वो, कोई क्यों ना हो, ये मान के चलना। शूल पाणी सम यदि भक्त निंदा करे तथापि शीघ्र मरे, बता रखा शिव जी की तरह कोई ऊंचा हो जाए लेकिन मन में वैष्णव का अपराध कर करके, ठीक है कि नहीं, अगर वो किसी की भी क्लास नहीं सुनता है, केवल क्लास देते रहेगा, तो क्या होगा, वो जरूर गिरेगा, याद भगवान उसको कहीं ना कहीं टपका डालेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, उसको शिक्षा देंगे कि तुम गलत जा रहे थे, उसको अनुभव होगा, और उसमें भी भगवान उसका हित करते हैं कि जो तुम थोड़ा सा अभिमानी हो गए हो उसको दूर करो, अब तुम ठीक हो जाओ, कोई क्यों ना हो जाए। और जी
जी, जैसे कोई नाम जप कर रहे हैं और 10 नाम अपराध में से कोई ना कोई मतलब हो जाता है, गलती से हो जाता है अपराध, तो उनकी गति क्या होगी, मतलब अपराध के सहित जो जप कर रहे हैं?
जी जी, अपराध सहित जो जप कर रहे हैं ना, उनकी गति यही है कि अपराधों के साथ में आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है जो आपने नाम जपा है, भगवान उसमें कहते हैं मैं मनुष्य शरीर जरूर देता हूँ, लेकिन हाँ, अगर खाली आप इसी बात को लिए रहे मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो नहीं मिलेगा, फिर उसमें भक्त भी कुत्ता बन जाता है, कभी कभी भक्त को भी कुत्ता बनना पड़ता है, भक्त को भी गिरगिट बनना पड़ा, है कि नहीं, भक्त को भी हिरण बनना पड़ा भाई, भरत महाराज जी को हिरण बनना पड़ा, तो आपके कर्म के हिसाब से सूअर भी बनना पड़ सकता है, गधी भी और गधा भी बनना पड़ सकता है, जैसा कर्म होगा आपका, ये तो सबके लिए नियम लागू है, ठीक है कि नहीं, कोई भी वो नहीं है। तो अपराध से, अपराध युक्त नाम जो करता है अपराधों के साथ साथ में, तो उसको भगवान का प्रेम मिलने में संदेह है ना, कितने जन्म लग जाएंगे, तो क्यों करें ऐसा, हम खाली संसारिक फल मिलेंगे थोड़ा बहुत, बस हो गया, उसको उसको पाके क्या करोगे बताओ। अब चलो ठीक है, अगले जन्म में बहुत अमीर घर में जन्म ले ली, भक्ति नहीं मिली, क्या करोगे फिर अमीर घर का? अमीर को चाटोगे बताइए, उस पैसे का क्या करोगे? अभिमान आएगा बस। ठीक है, और हाँ आराम से भगवान के लिए तकिया रखो, हल्का सा पतला पतला, जो थोड़ा सा ऐसे वो हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊंचा ऊंचा रख दिया फिर इधर को गिर गए हो, ऐसे थोड़ा सा बढ़िया ठीक ठीक तकिया बनाना चाहिए जिसमें आराम से सो सके हो, थोड़ा छोटा छोटा जिस हिसाब से ठाकुर जी हैं, है नहीं? और गद्देदार वो रखो, साफ चादर उसमें होनी चाहिए, तीन चार चादरें होंगी उसको बदलते रहो, उसको करके बढ़िया से ठाकुर जी के वस्त्र उतार के, अगर ज्यादा गहने समेत पहना रखे तो उनको उतार देना चाहिए क्योंकि गहने चुभेंगे उनको। रात का नाइट ड्रेस पहनाना चाहिए एकदम लंगोट, और तो गर्मी आ रही ना लंगोट में, और जब गर्मी खूब गर्मी पड़ने लग जाती है तो पूरा धक्के नहीं, केवल लंगोट और ऊपर एक छोटा सा फेंटा, बस बस हो गया। और ठाकुर जी को जब सवेरे हम दर्शन करते हैं ना, यहाँ भी जब पूरे अंग प्रदर्शन करते हैं, जब ठाकुर जी अपना असली में उनके पूरे पूरे अंग दिखाई देते हैं एकदम, ठीक है ना, पूरी ब्रेस्ट दिखाई देती है, हाथ दिखाई, पैर इतने सुंदर सुंदर, और कभी कभी जब ऐसे ग्वाले के रूप में बनाते हैं ना पुजारी लोग उनको, ऐसे फेंटा बांध के खाली हो, वो मैं तो सबसे बेस्ट सबसे सुंदर लगता है मुझे, मुकुट में बहुत आनंद नहीं आता है, समझ रहे? वो फेंटा बांध के ना ठाकुर जी असली ग्वाले के रूप में होते हैं और ब्रज मूड होता है, ब्रज भाव, वो बहुत बढ़िया एकदम, बहुत सुंदर, दिल करता है बस अभी अभी करने लगा अभी अंदर। और कभी कभी तो एक दफे क्या किया, गौरा निताय है ना, गौर निताय ने दोनों के हाथ ऐसे हैं और नीचे ऐसी ड्रेस बांध रखी कि फूल माला, ऐसा लग रहा था कि अभी नीचे कूद पड़ेंगे वो, अभी नीचे आके फूल माला वो ऐसे फेंक देंगे करके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी नीचे आ जाएंगे वो। और सच में गौर निताय आ भी जाते हैं, जब आप कीर्तन करते हो तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बीच में नाचते हैं आके, फिर वहां नहीं रहते हैं, इसलिए जब कीर्तन चलता है तो हम लोग डांस करते हैं, बहुत ज्यादा अंदर ही दर्शन में नहीं रहते हैं लोग, डांस में ज्यादा आनंद लेते हैं क्योंकि उस वक्त भगवान वहां आ जाते हैं, है नहीं? भगवान बीच में आ जाते हैं, भगवान बोलते हैं वहां नहीं हूं मैं, यहाँ आ गया, ये आनंद है। अब ये नहीं कि सारे लोग वहीं पर आके खड़े रहे वहां कीर्तन चल रहा, नहीं, तो कीर्तन में भाग लेना चाहिए। उत्तिष्ठो कृष्ण, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो कृष्ण त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, तीनों लोगों का मंगल कीजिए, ठीक है कि नहीं? हम सबका मंगलम कुरु, हम सबका मंगल कीजिए, और हरे कृष्ण बोलते रहना चाहिए मन में, अगर जोर से नहीं बोले मन में, ठीक है ना, सेवा करते हो, और बाकी कैसे खिला दीजिए प्रभुपाद जी का, ऐसे हल्के से बढ़िया ऐसा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जितने भी भजन गा रखे सब कृष्ण के गुणगान के लिए, सब अपनी दीनता है वहां पर, तो वो ठाकुर जी का गुणगान होना चाहिए मंदिर में, जब आप भोग लगाते हो बाहर बैठ के, भज भक्त वत्सल श्री गौरा हरि, कभी कभी गाना चाहिए, या पुजारी लोग गायत्री करते हैं तब तक अपनी गायत्री कर लो, है नहीं? ठाकुर जी का गुणगान चल रहा है, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे आनंद से, फिर ठाकुर जी को बिठाया जाता है, सब कुछ रखा जाता है ना, उनका बांसुरी वांसुरी, बांसुरी निकाल देना चाहिए है, भोजन खाते समय बांसुरी लगी हुई है तो कैसे खाएंगे, है फिर आंखों से लेना पड़ेगा उनको निकल। हम तो चाहते हैं भगवान हमारा जो भोग लगाया है उसको प्रेम से पाए पूरे हाथों समेत, ठीक है? और कोई प्रश्न है पूछिए। तो जो लोग, कितने लोग हैं जो सोलह माला नहीं कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए कृपा करके, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, कोई आपको अनादर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आते रहिए क्लास में, और निवेदन है आपको एडवांस तब माना जाएगा जब आप धीरे धीरे 16 तक बोलो, हम मोबाइल को छेड़ते रहते ना 1-1 घंटा, खटपट 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 खटपट, क्रिकेट देखते हैं, दोस्तों के संग मिलते हैं, नाना उधर भ्रमण करते हैं, तो सुबह के समय में जल्दी उठ जाना चाहिए, ऐसे क्लास में आओगे तो मति बनी रहेगी, है नहीं? क्लास में क्लास नहीं आओगे तो धीरे धीरे फिर वही टपोरीपना शुरू हो जाएगा, टपोरीपन होता है टपोरी, वो सब बम्बैया लोग टपोरी हो जाते हैं एकदम, चैन खोल गए क्या है अंदर, हड्डी हड्डी और कुछ नहीं, क्या दिखाओ बताओ, चैन खोल के एकदम बाज बिल्कुल इतने लंबे लंबे रहे, पता नहीं कहाँ है, किसको दिखा रहा है, कोई पसंद भी नहीं करता है, अपने आप में खुश होता है, मेरे को सब पसंद है, खास पसंद कर रहे तुम लोग, कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है? और तो आने वाला फरवरी में भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आविर्भाव दिवस है और उसी दिन गौर गोविंद महाराज जी का तिरुभाव दिवस, इसका उनके आचार्य थे भुवनेश्वर मंदिर में ना। प्रभुपाद जी को पता कैसे मिले गौर गोविंद महाराज? गौर गोविंद महाराज जंगलों में पहले टीचर थे, वो उनके वही बच्चे भी हैं, लेकिन शुरू से बैरागी भाव था उनका और वो जंगलों में भ्रमण करते करते उनको पता चला एक स्वामी जी आए हैं प्रभुपाद जी के लिए वृंदावन में। वो बाहर आ गए, बाहर आए दाढ़ी वाड़ी पूरी लगी थी, प्रभुपाद ने देखा नहीं अभी। प्रभुपाद अंदर उस दिन दो लोगों को संन्यास दे रहे थे, कितने लोगों को? तो प्रभुपाद बोलते अच्छा एक गेट पे कोई भक्त आया है उसको लेके आओ अपने शिष्य से, देखा नहीं देखो ना उनने देखा, प्रभुपाद को पता चल गया। वो गए, उन्होंने सोचा शायद प्रभुपाद बुला रहे कोई हाई फाई व्यक्ति होगा, वहां कोई मिला ही नहीं। प्रभुपाद बोलता है प्रभुपाद कोई नहीं, बोलते ठीक से देखो एक दाढ़ी में होगा। तब देखते हैं ये बिल्कुल एकदम जैसे जंगली व्यक्ति होता है ना, जंगल में ही घूम के आ रहे थे तो जंगली जैसे लग रहे थे, पूरा सा मैले को चेहरे दाढ़ी वाड़ी। तो आप बोले हाँ मैं मिलने आया हूँ। उसको लेके गए तो दो तीन कपड़े रखे थे वहां पर, दो सन्यासी थे। प्रभुपाद बोलते ठीक है एक कपड़ा उठाओ दाढ़ी वाड़ी और पूरा सब ठीक से साफ करके आओ, टेक सन्यास। कोई हरिनाम दीक्षा नहीं, कोई ब्राह्मण दीक्षा नहीं, सब उसी को ले लिया। गौर गोविंद महाराज जी को ऐसे हुआ है, इसलिए ऐसे नहीं उनका ये आविर्भाव दिवस कैलेंडर में डाल दिया। जयानंद प्रभु का डाला गया है और गौर गोविंद महाराज जी का डाला गया है अभी तक, ठीक है कि नहीं? वैष्णव कैलेंडर में तो ऐसे सच्चे भक्त थे और गौरांगो गौरांगो कह के फरवरी में ही उसी दिन वहीं पर मायापुर में जब मीटिंग में गए थे वो इस गोष्ठी के लिए, वहीं पर गौर गौर कहते वहीं पर शरीर छोड़ा उन्होंने। बहुत ऊंचे भक्त हैं, उनका कैसेट आप सुनोगे जब ना, आप देखिए एकदम टोटली पूरा बैराग से भरी हुई बात है सब। उनके भक्तों ने जिनने उनका संग किया है वो तो सब रोते हैं, कितना आनंद है ना। आज भी वहां बहुत सुंदर आप देखेंगे डीटी कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर गोविंद महाराज जी की लाइव हुए है पूरा, बहुत सुंदर। भुवनेश्वर मंदिर कभी जाए जब आप जाओगे तो वहां भी जाए, भुवनेश्वर में बहुत आनंद। भक्तों के संग जाना चाहिए, प्रेमी भक्तों के संग दर्शन के लिए जाओ तो एक एक स्थान का आनंद ही कुछ हो रहा है। और समय लेके जाओ थोड़ा, तो छुट्टी ले लो कोई बात नहीं भैया, लीव सारी छुट्टियों को मिला मुलू करके अपना 20 दिन की छुट्टी ले लो, शांति से जाओ कथा सुनते हुए वहां आओ। और ले जाना उन्हीं को चाहिए जिनको जल्दीबाजी नहीं है, जिसको जल्दीबाजी बोलो भाई थोड़ी देर हम घर बैठे रहो या आप आके आ जाना, फिर वहां बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे बस।